आगे सबक देखिए भाई। किताबुल इबाक अल आबिकु अखज़ुहु अफ़ज़लु फी हक़्क़ि मन यक़्वा अलैह लिमा फीहि मिन इहयाइही व अम्मा अद्दालु फ़क़द क़ील कज़ालिका व क़द क़ील तर्कुहु अफ़ज़लु लिअन्नहु ला यब्रहु मकानहु फ़यजिदुहुल मालिकु व ला कज़ालिका अल आबिक। भाई गुज़श्ता सबक में हमने किताबुल लुक्ता पढ़ी। आपने पढ़ा कि रास्ते में पड़ी हुई कोई चीज मिले, कोई माल मिले तो इसको लुक्ता कहते हैं भाई। और ये लुक्ता अगर मालिक को पहुंचाने की नीयत से उठाया जाए तो ये अमानत के हुक्म में है और इस पर गवाह बनाने चाहिए। तरफेन के नजदीक गवाह बनाना जरूरी है। और अगर उस शख्स ने उस लुक्ता को अपने लिए उठाया है तो फिर ये लुक्ता गसब के दर्जे में है, और अगर उसी के पास ये हलाक हो गया तो उसको जमान देना पड़ेगा। और साहिब हिदाया ने आपको ये भी बतलाया कि लुक्ता के अंदर तशहीर की जाएगी, उसके ऐलानात करवाए जाएंगे ताकि असल मालिक का पता चल जाए और वो लुक्ता उस तक पहुंच जाए। अब कितनी तशहीर करवाई जाएगी तो इसमें तीन कौल जिक्र फरमाए। एक तो कुदूरी के मतन में आ गया कि अगर 10 दिरहम या ज्यादा का लुक्ता है तो एक साल तक तशहीर करवाएंगे, और अगर कम है तो फिर चंद दिन तक उसकी तशहीर करवाई जाएगी। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जो है मबसूत में फरमाते हैं कि जिस किस्म का भी लुक्ता हो, चाहे माले कलील हो चाहे माले कसीर हो, हर हाल में एक साल तक उसकी तशहीर करवाई जाएगी, और उसके बाद भी अगर मालिक का पता नहीं चलता तो फिर वो सदका कर दिया जाएगा। जबकि उलमा ने इमाम सरख्सी के कौल पर फतवा दिया है, और इमाम सरख्सी फरमाते हैं कि इन मिकदारों में से कोई भी मिकदार लाजिम नहीं है, बल्कि ये मुबतला बिही की राय के सुपुर्द है। मुबतला बिही उस चीज की तशहीर करवाए यहां तक कि उसका गालिब गुमान हो जाए कि इसका मालिक अब इसे नहीं ढूंढ रहा होगा, तो फिर उसे सदका कर दे। और अगर सदका करने के बाद उस लुक्ते का मालिक आ गया तो उस मालिक को इख्तियार है, चाहे तो वो उसी सदके को चलने दे, और वो चाहे तो इस मुल्तकित से जमान ले ले, क्योंकि इस मुल्तकित ने उसका माल उसकी इजाजत के बगैर उठाया और सदका किया है। और मालिक चाहे तो वो उस फकीर से भी जमान ले सकता है, और अगर वही लुक्ता भी आईनी ही फकीर के पास मौजूद है तो मालिक उसे भी वापस ले सकता है। और इसी तरह आपने ये भी पढ़ा कि इंदल अहनाफ अगर किसी को भेड़ बकरी या गाय बैल वगैरह या इसी तरह किसी के ऊंट मिलते हैं तो ये भी लुक्ता के हुक्म में है। इमाम शाफई और इमाम मालिक रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि जो जानवर अपना बचाव खुद कर सकता है तो उसे पकड़ना जो है मकरूह तहरीमी है, क्योंकि यह जानवर अपना बचाव खुद कर सकता है। अलबत्ता वो जानवर जो अपना दिफा खुद नहीं कर सकता, जैसे भेड़ बकरी वगैरह है, उनको हिफाजत की नीयत से रोका जा सकता है, वो लुक्ता के हुक्म में है। लेकिन इंदल अहनाफ चाहे भेड़ बकरी वगैरह हो, चाहे गाय बैल वगैरह हो, और चाहे ऊंट और घोड़े वगैरह हो, इन सब का हुक्म लुक्ता वाला ही है। और फिर आपने ये भी पढ़ा कि ये जो जानवर है ये घास चारे का मोहताज है, तो फिर अगर मुल्तकित इस जानवर के घास और चारे वगैरह पर खर्चा करता है तो अगर वो काजी की इजाजत के बगैर अपनी तरफ से खर्च कर रहा है तो फिर ये मुतबर्रिअ है, ये इस नफके को मालिक पर बतौर दैन के लाजिम नहीं कर सकता, क्योंकि इसको मालिक पर विलायत हासिल नहीं। जब इसको मालिक पर विलायत हासिल नहीं है तो ये उसके जिम्मे में दैन भी लाजिम नहीं कर सकता। हां अलबत्ता अगर काजी के हुक्म पर ये जानवर पर खर्च कर रहा है तो इस सूरत में फिर वो मालिक से ये नफके का दैन वसूल कर सकता है। और साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर काजी के पास कोई इस किस्म का जानवर ले आए कि ये ऊंट गाय या बकरी वगैरह मुझे मिली है, तो काजी उस जानवर में गौर करे, अगर उस जानवर का कोई फायदा है यानी उसे किराए वगैरह पर दिया जा सकता है तो काजी उसे किराए वगैरह पर दे ताकि उसी आमदनी के जरिए इस जानवर का खर्चा पूरा हो। इस तरह मालिक का भी फायदा होगा कि इसे अपना जानवर मिल जाएगा और नीस वो खर्चे से भी बच जाएगा। लेकिन अगर जानवर ऐसा है कि उसका कोई फायदा नहीं, उसे किराए वगैरह पर नहीं दिया जा सकता, तो फिर इस जानवर पर अगर खर्च करना बेहतर है तो फिर दो तीन दिन तक उस पर खर्च करने का हुक्म दे और मालिक का इंतजार किया जाए। इसलिए क्योंकि अगर मुसलसल खर्च करने का हुक्म दिया जाएगा फिर तो नफके का खर्चा इतना बढ़ जाएगा कि वो जानवर की असल कीमत से ही बढ़ जाएगा। तो काजी दो तीन दिन तक उस हैवान पर खर्च करने का हुक्म दे और मालिक का इंतजार किया जाए। अगर मालिक आ जाता है तो अच्छी बात है, उसके हवाले कर दिया जाए वो हैवान, और अगर मालिक नहीं आता तो इस जानवर को काजी बेच देगा और इसके समन मालिक के लिए महफूज रखने का हुक्म दे देगा। और साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि मबसूद के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने बैना कायम करने की भी शर्त लगाई है कि अगर कोई शख्स काजी के पास इस तरह का जानवर ले आए तो काजी फौरन ही उस पर खर्च करने का हुक्म न दे, पहले यह तो पता चले कि यह जानवर उसने अपने लिए रोका है या मालिक के लिए। अगर मालिक के लिए रोका है फिर तो यह अमानत के हुक्म में है, लिहाजा इस पर वो काजी खर्च करने का हुक्म दे। और अगर उस जानवर को पकड़ने वाले ने इस जानवर को अपने लिए रोका है तो फिर तो यह गसब के दर्जे में है और काजी गसब पर खर्चा करने का हुक्म नहीं दे सकता। लिहाजा काजी उस हैवान को पकड़ने वाले से बयीना तलब करे कि गवाह पेश करो कि तुमने यह मालिक के लिए इस हैवान को रोका था। तो अगर वो गवाह पेश कर दे तो फिर काजी उस पर खर्चा करने का हुक्म देगा, और अगर वो गवाह पेश न कर सका तो काजी उसे कहेगा कि अगर तुम सच्चे हो इस बात में कि तुमने ये मालिक के लिए ही रोका है तो फिर तुम इस पर खर्च करो। तो लिहाजा अगर इसने मालिक के लिए रोका होगा तो ये अपना खर्चा मालिक से वसूल कर सकता है, और अगर इसने मालिक के लिए नहीं रोका तो इसके लिए मालिक से खर्चा वसूल करना भी जायज नहीं है भाई। और साहिब हिदायत ने आपको यह भी बतलाया कि ज्यादा सही रिवायत के मुताबिक ये मुल्तकित जो है उस हैवान के मालिक पर नफके के अंदर उसी वक्त रुजू कर सकता है जब काजी ने भी रुजू करने की शर्त लगाई हो। और साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि जो मुल्तकित है ये इस हैवान के नफके का दैन वसूल करने के लिए इस हैवान को मालिक से रोक भी सकता है। मालिक हाजिर हो जाए तो मुल्तकित को इख्तियार है कि वो इस हैवान को रोक ले जब तक मालिक उसे नफके का दैन अदा न करे। इसलिए क्योंकि इस लुक्ते को जो जिंदगी मिली है वो इस मुल्तकित के नफके की वजह से जिंदगी मिली है, तो ये इसी तरह हो गया जैसे कि मालिक को ये जो मिल्कियत हासिल हो रही है इस लुक्ते पर ये मुल्तकित की तरफ से हासिल हो रही है। और साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि हराम और गैर हराम दोनों के लुक्ते बराबर हैं, जबकि इमाम शाफी हमला फरमाते हैं कि हराम के लुक्ते के अंदर हमेशा तशहीर ही की जाएगी, उसको सदका करना जायज नहीं है, जबकि इंदल अहनाफ हराम का लुक्ता हो या गैर हराम का लुक्ता हो सबका हुक्म एक ही है कि तशहीर के बाद भी मालिक का पता ना चले तो उसको फिर सदका कर दिया जाएगा भाई। और नीज आपने पढ़ा अगर किसी शख्स को लुक्ता मिला है और मालिक आ गया और उसने कुछ निशानियां बयान कर दी तो इस मुल्तकित के लिए जायज है वो ये लुक्ता उस मालिक के हवाले कर सकता है, अलबत्ता ये उस पर वाजिब नहीं है जब तक मालिक बयना कायम न कर दे भाई। और अगर सिर्फ निशानी की वजह से मुल्तकित वो लुक्ता उस शख्स के हवाले कर रहा है तो फिर उससे जामीन भी ले सकता है, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कोई और शख्स आकर कहीं दावा ना कर दे, लिहाजा मुल्तकित इस हाजिर होने वाले से जामीन ले सकता है भाई। और यह भी साहिब हिदायत ने बतलाया कि हमारे नजदीक लुक्ता जो है इसको सदका किया जाएगा, लिहाजा मालदार को नहीं दिया जा सकता, और अगर मुल्तकित मालदार है तो वह खुद इससे नफा नहीं उठा सकता, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मालदार भी तशहीर के बाद लुक्ते से नफा उठा सकता है भाई। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। किताबुल इबाक अल आबिकु अफजुहू अफजलु फी हक मन यक्वा अलैह। किताबुल इबाक भाई, मैंने आपको बतलाया था अबाका यबिकु इबाकन का माना है भाग जाना, और खास तौर पर यह गुलाम के भागने के लिए इस्तेमाल होता है, तो जो गुलाम भाग जाए उसको आबिक कहते हैं। तो किताबुल इबाक यह किताब है गुलाम के भागने के बयान में। अल आबिकु अख्ज़ुहू अफ़ज़लु फ़ी हक़ मन यक़्वा अलैह। अल आबिकु अख्ज़ुहू अफ़ज़लु के भागा हुआ जो गुलाम है उसको पकड़ना अफजल है फी हक मन उस शख्स के हक में यकवा अलै ही जो इस पर कादिर है, जो इस गुलाम को पकड़ने पर कादिर है उसके लिए अफजल यह है कि वो इस भागे हुए गुलाम को पकड़ ले। भाई भाई यहां लफ्ज आया मैं यकवा अलै ही, याद रखो ये बाब है कविया यकवा भाई, और इसके अंदर ये जो आखिर में या है ये भी असल में वाव ही थी भाई। कविया असल में क्या था कविवा, और फिर आखिर में वाव था और माकबल कसरा था तो आखिर वाले वाव को या से बदल दिया तो कविया हुआ। इसी तरह यकवा असल में था यकवा वो, और फिर ये वाव चौथी जगह पर आया और आपने पढ़ा है कि वाव चौथी जगह या उसके बाद आए तो उसको या से बदलते हैं, तो इसको या से बदल दिया गया, और फिर या मुतहरिक माकबल फतहा था उसको अलिफ से बदल दिया गया तो यकवा हुआ भाई। तो कहते हैं अल आबिक अफजुहू अफजल फी हक मन यकवा अलैही, भागा हुआ गुलाम जो है उसको पकड़ना अफजल है उस शख्स के हक में यकवा अलैही जो इस पर कादिर है। लिमाफी मिन इहयाइही, भाई क्यों पकड़ना अफजल क्यों है, कहते हैं लिमाफी मिन इहयाइही इसलिए क्योंकि इसके अंदर उसको जिंदा करना है। मालिक के हक में तो ये गुलाम ऐसे ही हो गया जैसे हलाक हो गया है, उसके हाथ से तो ये गुलाम निकल चुका है, तो ये जब कोई शख्स पकड़कर मालिक तक पहुंचाएगा तो गोया उसने मालिक के लिए गुलाम को नई जिंदगी दे दी। कहते हैं लिमाफी ही मिन इहयाइही इसलिए क्योंकि इसके अंदर इस भागे हुए गुलाम को जिंदगी देना है। वह अम्मालु फकद कीला कजालिक, भाई जाल भाई जल्ला या जिल्लू का एक माना आता है रास्ता भूल जाना, तो रास्ता भूलने वाले को जालुन कहते हैं। तो अब एक गुलाम है जो आका से भाग गया है और एक गुलाम वो है जो रास्ता भूल गया है, तो आपको बतलाएंगे कि बास फुकहा फरमाते हैं वो गुलाम जो रास्ता भूल गया है उसका भी यही हुक्म है, यानी जैसे भागे हुए गुलाम को पकड़ना अफजल है इसी तरह रास्ता भूले हुए गुलाम को पकड़ना भी अफजल है ताकि उसको मालिक तक पहुंचा दिया जाए। तो कहते हैं वह अम्मा जालू, और वो गुलाम जो रास्ता भूला है फकद कीला कजालिक, तो तहकीक कहा गया है वो भी इसी तरह है। वकद कीला, और तहकीक कहा गया है तर्कुहू अफजलू कि उस रास्ता भूले हुए गुलाम को छोड़ना अफजल है कि उसको उसी तरह छोड़ दिया जाए उसे न पकड़ा जाए। लिअन्नहु ला यब्रहु मकानहु, बरिहा यब्रहु के माने होते हैं हटना और अलग होना। लिअन्नहु ला यब्रहु मकानहु इसलिए क्योंकि ये गुलाम जो रास्ता भूला है ये अपनी जगह से नहीं हटेगा, गुलाम है ये रास्ता भूल गया है तो ये वहीं रहेगा कि मेरा मालिक मुझे तलाश करता हुआ यहां पहुंच जाएगा, जबकि वो गुलाम जो भागा हुआ है वो तो एक जगह नहीं रहेगा, वो तो छुपता फिर रहा है कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, लिहाजा उस भागे हुए गुलाम को पकड़ना अफजल है और वो गुलाम जो रास्ता भूल गया है उसको उसी की जगह पर छोड़ना अफजल है। ये माना है। वकद कीला, और तहकीक कहा गया है तर्कुहु अफजलु, भागे हुए गुलाम को छोड़ना अफजल है। लिअन्नहु ला यब्रहु मकानहु इसलिए क्योंकि वो अपनी जगह से नहीं हटेगा। फयजिदुहुल मालिकु तो उसका मालिक उसे पा लेगा। वला कदालिकल आबिकु और भागा हुआ गुलाम तो ऐसा नहीं है। सुम्मा आखिदुल आबिकी याती बिही इला सुल्तान, सुम्मा आखिजुल आबिकी फिर भागे हुए गुलाम को पकड़ने वाला याती बिही इला सुल्तानी उसको बादशाह के पास ले आएगा। किसके पास ले आए, बादशाह के पास ले आएगा या बादशाह का कोई नाइब है या काजी है उसके पास ले आएगा भाई। लिअन्नहु ला यक़दिरु अला हिफ्ज़िही बिनफ्सिही इसलिए क्योंकि वो शख्स खुद इस गुलाम की हिफाजत पर कादिर नहीं है। उसने एक भागे हुए गुलाम को पकड़ा है, उसके पास तो इंतजाम नहीं है कि अपने पास इसको हिफाजत से रख सके क्योंकि गुलाम फिर वहां से भाग जाएगा, लिहाजा वो इसको बादशाह या उसके नाइब के पास ले आएगा या काजी के पास ले आएगा और काजी फिर इस गुलाम को कैद में डाल देगा और फिर इंतजाम करेगा इसके मालिक तक पहुंचाने का। भाई तो कहते हैं सुम्मा आखिजुल आबिकी यती बिही इला सुल्तानी, फिर उस भागे हुए गुलाम को पकड़ने वाला उसको बादशाह के पास ले आएगा। लिया नहू ला यकदिरु अला हिफ्ज़िही बिनफ्सिही, इसलिए क्योंकि उस गुलाम को पकड़ने वाला खुद उसकी हिफाजत पर कादिर नहीं है। बिखिलाफ लुक्तति, बखिलाफ लुक्ता के लुक्ता जो है उसकी तो हिफाजत कोई भी कर सकता है, तो वहां बादशाह के पास आने की जरूरत नहीं। सुम्मा इजा रुफ़िअल आबिकु इलैही, फिर जब भागे हुए गुलाम का मामला पहुंचाया जाए बादशाह तक, यहबिसुहू, तो बादशाह उसको कैद कर देगा। वलाउ रुफ़िअल ज़ालु, और अगर रास्ता भूले हुए गुलाम का मामला बादशाह तक पहुंचाया जाए तो ला यहबिसुहू, तो उसे कैद नहीं करेगा। لأنه لا يؤمن على الآبق الإباق ثانياً, अब वजह जिक्र कर रहे हैं कि भागे हुए गुलाम को बादशाह कैद में क्यों डालेगा। कहते हैं वजह यह है कि इस भागे हुए गुलाम पर इत्मीनान नहीं है दूसरी मर्तबा भागने से, यह दोबारा भाग जाएगा भाई, लिहाजा इसको बादशाह कैद में डालेगा। لأنه لا يؤمن, इसलिए क्योंकि इत्मीनान नहीं है, अल आबिकी, उस भागे हुए गुलाम पर, अल इबाक सानियन, दूसरी मर्तबा भागने का, उस भागे हुए गुलाम पर दूसरी मर्तबा भागने पर इत्मीनान नहीं है कि वो फिर भाग जाएगा। बिखिलाफ ज़ालिब, बिखिलाफ उस गुलाम के जो रास्ता भूल गया है, क्योंकि उसकी आदत भागना नहीं है भाई। फिर ये तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं सुम्म इजा रुफ़िअल आबिकु इलैही यहबिसुहू, फिर ये भागे हुए गुलाम का मामला अगर बादशाह तक उठाया गया तो यहबिसुहू, तो बादशाह उसको कैद कर देगा। वलाउ रुफ़िअ ज़ालु, और अगर रास्ता भूले हुए गुलाम का मामला बादशाह तक पहुंचाया गया तो ला यहबिसुहू, तो बादशाह उसे कैद नहीं करेगा। लिअन्नहु ला युमनु अलल आबिकिल इबाकु सानियन, इसलिए क्योंकि भागे हुए गुलाम पर इत्मीनान नहीं है दूसरी मर्तबा भागने पर, यह दूसरी मर्तबा भी भाग सकता है। बिखिलाफ, बखिलाफ उस गुलाम के जो रास्ता भूला है कि उसके भागने का खतरा नहीं। आगे देखिए, قال ومن رد آبقا على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه جعله أربعون درهما। भाई यहां से अब जुअल को बयान कर रहे हैं। याद रखो, जो शख्स भी किसी भागे हुए गुलाम को मालिक के पास वापस लेकर आता है तो गोया इस शख्स ने गुलाम को नई जिंदगी दे दी है मालिक के हक में। मालिक के हाथ से तो यह गुलाम निकल गया था, उसके लिए तो यह गुलाम हलाक हो गया था, लेकिन मालिक के हक में उसने गोया गुलाम को नई जिंदगी दे दी, लिहाजा मालिक को अब उसको लाने का खर्चा देना पड़ेगा। अब वो कितना खर्चा होगा तो आपको बतलाएंगे कि अगर तीन दिन या इससे ज्यादा की मसाफत से वो गुलाम को लेकर आया है तो फिर उसका जुअल जो है वो 40 दिरहम है। तो जो है जुअल, वो खर्चा और वो उजरत जो गुलाम लाने पर दी जाएगी भाई। तो अगर वो गुलाम को तीन दिन की मसाफत या उससे ज्यादा से लेकर आया है तो उसकी उजरत 40 दिरहम होगी भाई। और वजह यह है कि ये सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से इसी तरह मनकूल है, इसी तरह मनकूल है। साहिब हिदाया खुद भी आगे जिक्र फरमाएंगे कि बाज़ सहाबा ने 40 दिरहम खर्चा मुकर्रर फरमाया और बाजों ने इसे कम मुकर्रर फरमाया। और वजह यह है कि इसके अंदर लोगों के माल की हिफाजत होगी। एक शख्स है, वो तीन चार दिन की मसाफत से चलता है और उस भागे हुए गुलाम को आका के पास ले आता है, और फिर देखो तीन चार दिन का सफर तय करके वो गुलाम लाया है और इतने ही मुद्दत अब उसे वापसी में भी लगेगी, तो उस आदमी ने अपना इतना वक्त दिया है तो लिहाजा उसको कुछ उजरत दी जाएगी, क्योंकि उजरत की वजह से लोगों का माल महफूज होगा। अगर उजरत नहीं मिलेगी तो फिर कोई भी इतना सफर तय करके किसी का गुलाम वापस पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन जब उसे पता है कि मुझे इतना पहुंचाने पर इतना माल मिलेगा तो फिर वो मशक्कत भी बर्दाश्त कर लेगा भाई। तो लोगों के मालों की हिफाजत के लिए ये जुअल यानी ये जो खर्चा है ये मुकर्रर किया गया। तो ये तीन दिन या उससे ज्यादा की मसाफत से लाए तो 40 दिरहम है, और उससे कम मसाफत है तो फिर उसी के बकदर कम खर्चा आएगा भाई। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वमन रद्द आबिकन अला मौलाहू, और जिसने भागे हुए गुलाम को वापस किया उसके आका पर, मिम मसीरती सलासती अय्याम इन फसाइदन, तीन दिन की मसाफत या उससे ज्यादा से, फलहू अलैहि जुअलुहु अरबऊन दिरहमा, तो उस वापस करने वाले के लिए उस आका पर उस गुलाम का जुअल है अरबऊन दिरहमा 40 दिरहम, व इन रद्दहू लि अकल्ल मिन ज़ालिका, और अगर उसने वो भागा हुआ गुलाम वापस किया है इससे कम मसाफत से, फबिहिसाबिही, तो उसका खर्चा उसी के हिसाब से होगा, यानी कम से कम मुद्दत मसाफत 3 दिन है और 3 दिन के अंदर 40 दिरहम हैं, तो मालूम हुआ हर एक दिन का खर्चा जो है वो 13 दिरहम और सुलुसे दिरहम बनेगा, 13 × 39 और एक दिरहम और भी है 40 दिरहम, तो हर दिन का खर्चा कितना हुआ 13 दिरहम और सुलुसे दिरहम, तो अगर 3 दिन से कम मसाफत है तो फिर इसी हिसाब से उसको खर्चा दिया जाएगा। तो कहते हैं वह इन रद्दहू लि अकल्ल मिन ज़ालिका फबिहिसाबिही, और अगर वो उस गुलाम को वापस लाया है उससे कम मसाफत से, फबिहिसाबिही, तो उसका खर्चा उसी हिसाब से होगा। वहाज़ इस्तिहसानुन, और ये इस्तिहसान है, ये जो खर्चे का वजूब है ये इस्तेहसानन है, कियास तो ये तकाजा करता है कि इस वापस लाने वाले के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए जब तक मालिक ने खुद शर्त ना लगाई हो। अगर मालिक ने खुद शर्त लगाई थी कि जो मेरा ये गुलाम ढूंढ कर लाएगा तो उसको मसलन मैं 50 दिरहम दूंगा, तो फिर तो खर्चा उस लाने वाले को मिलना चाहिए, वरना उसको खर्चा नहीं मिलना चाहिए। तो ये इस्तेहसानन खर्चा वाजिब किया गया है, वरना कियास तो इसकी नफी करता है। तो कहते हैं वहाद इस्तेहसानन, और ये खर्चे का वाजिब होना ये इस्तेहसान है। वल कियासु अल्ला यकून लहू शैउन, और कियास तो ये है कि इस वापस लाने के वाले के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, इल्ला बिशर्ती, मगर शर्त के साथ कि अगर मालिक ने शर्त लगाई थी। वह हुआ कौलु शाफिई रहिमहुल्लाहु ताला, और यही कौल है इमाम शाफी रहमहुल्लाह का भी, वो भी फरमाते हैं अगर मालिक ने इनाम का ऐलान किया है तो वो मिलेगा, वरना कोई खर्चा नहीं है। तो कहते हैं वह हुआ कौलु शाफिई रहिमहुल्लाह, और यही कौल है इमाम शाफी रहमहुल्लाह का, लिअन्नहु मुतबर्रिउन बिमनाफिही, इसलिए क्योंकि वह शख्स मुतबर्रिउ है अपने मनाफे में। भाई वो शख्स 3 दिन की मसाफत से उस गुलाम को लेकर आया है, तो इन 3 दिनों में वो शख्स अपने और भी काम कर सकता था, लेकिन उसने अपने मुनाफा यानी अपना सारा वक्त इस गुलाम को लाने में खर्च कर दिया। तो इमाम शाफी रहमतुल्ला फरमाते हैं कि ये शख्स गुलाम को लाने में और इसमें अपने मुनाफे और अवकात को खर्च करने में मुतबर्रिउ है। इस दौरान तो वो शख्स कोई मजदूरी वगैरह करके भी माल कमा सकता था, लेकिन उसने अपने मुनाफा जो है उनको मजदूरी वगैरह के बजाय गुलाम के लाने पर खर्च किया है, तो ये मुतबर्रिउ है। मैंने आपको बतलाया तबर्रो इसे कहते हैं कि अपनी तरफ से कोई एक चीज दी जाए जो उस शख्स पर लाजिम ना हो, जैसे आप फकीर को कोई वैसे ही माल देते हैं अल्लाह की रजा के लिए, तो देखो ये माल आप पर कोई देना लाजिम नहीं था, यह आप अपनी तरफ से जायद सदका कर रहे हैं। एक तो वो सदका वाजिबा है जैसे जकात है, वो तो आप पर देना वाजिब है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई जायद माल फकीर को देते हैं तो देखो ये तबर्रो है। या इसी तरह 5 नमाजें फर्ज हैं लेकिन आप अपनी तरफ से जायद कुछ नफल अदा करते हैं तो ये नफल भी क्या है, तबर्रो है। भाई बात समझ में आ गई। या इसी तरह रमजान के रोजे तो फर्ज हैं लेकिन आप जायद रोजे अपनी तरफ से रखते हैं तो ये जायद रोजे भी क्या है, तबर्रो है, यानी आप पर लाजिम नहीं थे, आपने अपनी तरफ से ये रोजे रखे हैं। भाई तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं लिअन्नहु मुतबर्रिउन बिमनाफिही, इसलिए क्योंकि ये वापस लाने वाला शख्स अपने मुनाफे के अंदर मुतबर्रिउ है। फअशबहल अब्दुज़्ज़ाल्लह, लिहाजा ये भागा हुआ गुलाम रास्ता भूले हुए गुलाम के मुशाबे हो गया। भाई याद रखो, रास्ता भूला हुआ गुलाम अगर उसको कोई मालिक के पास वापस लेकर आता है तो मालिक पर कोई खर्चा देना लाजिम नहीं। वैसे अखलाकी तौर पर मालिक को देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए कि उसने मालिक के माल को जिंदा कर दिया, लेकिन बहरहाल वो गुलाम जो रास्ता भूल गया है उसकी वापसी में शरीयत ने कोई खर्चा मुकर्रर नहीं फरमाया। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जैसे अब्दे जाल को यानी वो गुलाम जो रास्ता भूल गया है उसको वापस लाने वाला वो अपने मुनाफे के अंदर मुतबर्रिअ है, वो वैसे ही अपना वक्त लगा रहा है, अपनी मेहनत लगा रहा है, उसके लिए कोई जुअल वगैरह मुकर्रर नहीं है। तो इसी तरह यहां इस भागे हुए गुलाम को वापस लाने वाला भी अपने मुनाफे के खर्च करने में मुतबर्रिअ है, अपना वक्त देने में और अपनी मेहनत करने में मुतबर्रिअ है, लिहाजा इसके लिए भी कोई खर्चा मालिक पर लाजिम नहीं है भाई। तो कहते हैं फअशबहल अब्द अज़्ज़ाला, तो ये भागा हुआ गुलाम जो है रास्ता भूलने वाले गुलाम के मुशाबे हो गया। वलाना, अब हमारी दलील आ गई, वलाना और हमारी दलील यह है कि अन्ना सहाबत रिज़वानुल्लाही अलैहिम मुत्तफ़िकू अला वुजूबि असलिल जुअली, हम कहते हैं कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाही ताला अलैहिम अजमाईन ने इत्तेफाक किया था जुअल के मुकर्रर करने पर कि असल जुअल वाजिब है, असले जौल वाजिब है। हां, उसकी मकदार में इख्तलाफ किया था, बाजों ने 40 दिरहम वाजिब करार दिए और बाजों ने इससे कम दिरहम वाजिब करार दिए। तो अहनाफ की कोशिश होती है कि कोई ऐसी सूरत इख्तियार कर ली जाए कि इन सब पर अमल हो जाए भाई। तो इसी तरह अहादीस या सहाबा के अखवाल वगैरह में तआरुज आए तो अहनाफ की कोशिश होती है कि ऐसी सूरत इख्तियार की जाए कि दोनों हदीसों पर या दोनों रिवायतों पर अमल हो जाए। तो यहां सहाबा से एक रिवायत थी 40 दिरहम की और कुछ रिवायत थी 40 से कम की, तो हमने दोनों में मुआफकत पैदा कर दी कि 40 दिरहम उस शख्स के लिए होगी जो गुलाम को सफर की मसाफत से यानी 3 दिन या इससे ज्यादा कैसे लेकर आया है, और इससे कम उस शख्स के लिए होंगी जो मुद्दत सफर से कम मसाफत से गुलाम को लेकर आया है भाई। तो देखो अब इन अकवाल में तत्बीक और मुआफकत आ गई, मालूम हुआ ये अकवाल एक दूसरे के मुकाबिल नहीं है। 40 दिरहम वाला कौल उनके लिए है जो 3 दिन की मसाफत या इससे ज्यादा से लेकर आए, और इससे कम वाला कौल उनके लिए है जो इससे कम मसाफत से गुलाम को लेकर आए भाई। तो कहते हैं वलाना, हमारी दलील यह है कि अन्न सहाबत रिजवानुल्लाह अलैहिम, के सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जो हैं इत्तफ़क़ू, उन्होंने इत्तेफाक किया अला वुजूबी असलिल जुअली, असले जुअल के वाजिब होने में। सहाबा ने इत्तेफाक किया कि असले जुअल वाजिब है, हां मकदार में फिर इख्तिलाफ किया। तो कहते हैं सहाबा ने इत्तेफाक किया असले जौल के वाजिब होने में, इल्ला अन्ना मिनहुम मन औजबा अरबाईना, मगर इन सहाबा में से बाज वो हैं जिन्होंने 40 दिरहम वाजिब किए, व मिनहुम मन औजबा मादूनहा, और इनमें से बाज ने उस 40 से कम वाजिब किए, फऔजबना अल अरबाईना फी मसीरति सफरी, तो हमने सफर की मसाफत में 40 दिरहम वाजिब किए, व मादूनहा फी मादूनहु, और 40 से कम हम मुकरर किए सफर की मुद्दत से कम के अंदर, तौफीक व तलफीक बैनहुमा, तौफीक भाई तौफीक, तौफीक और ततबीक का माना है दो कौलों को एक दूसरे के मुआफिक बनाना, यानी उनके दरमियान बजाहिर जो तआरुज नजर आ रहा है उसको दूर करना, इसको क्या कहते हैं तौफीक भाई। और इसी तरह तलफीक भाई, लफ्फका युलफ्फिकु, तलफीक का माना है दो चीजों के दरमियान मुनासबत पैदा करना। तो यहां पर भी इन अकवाल में बजाहिर तआरुज नजर आ रहा था लेकिन हमने इनमें मुआफकत और मुनासबत पैदा कर दी। तो कहते हैं तौफीकम व तलफीकम बैनहुमा, इन रिवायतों के दरमियान मुआफकत और मुनासबत पैदा करने के लिए आगे देखिए, वली अन्न इजाबल जुअली असलुहु हामिलुन अलर रद्दी, यहां से अकली दलील जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया। अकली दलील ये जिक्र करेंगे कि ये जो जुअल को वाजिब किया गया है वो इसलिए है ताकि लोगों के मालों की हिफाजत हो, इसकी वजह से लोगों को रगबत होगी, वो भागे हुए गुलाम को मालिक तक वापस पहुंचाएंगे, तो इसकी वजह से लोगों के माल की हिफाजत होगी। तो लिहाजा असले जौल तो होना चाहिए, खर्चा कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन कितनी मकदार होनी चाहिए मकदार का पता अकल से नहीं चल सकता, उसके लिए सिमा जरूरी है, उसके लिए सिमा जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से सुना गया हो। तो लिहाजा भागे हुए गुलाम के बारे में तो रिवायात मौजूद हैं कि उसमें जौल होना चाहिए, लेकिन वो गुलाम जो रास्ता भूल गया है उसके बारे में कोई सीमा वगैरह नहीं है, लिहाजा उसके लिए जौल नहीं होगा। तो आप रास्ता भूलने वाले गुलाम को भागे हुए गुलाम पर कयास नहीं कर सकते, और इसी तरह भागे हुए गुलाम को आप रास्ता भूलने वाले गुलाम पर कयास नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वली अन्न ईजाब अल जौली, इसलिए क्योंकि जौल का वाजिब करना असलुहु हामिलुन अलर रद्दी, असल उसकी जो है वो रद्द पर उभारने वाली है। कि जौल का वाजिब करना किस लिए है कि ये उस वापस करने पर उभारने वाली है। इजिल हिस्बतुन नादिरतुन, हिस्बतुन भाई मैंने आपको बतलाया था कोई काम बतौरे अजर सवाब की नीयत से करना इसको हिस्बा कहते हैं। कहते हैं इजिल हिस्बतु नादिरतुन, इसलिए क्योंकि अजर सवाब की नीयत से करना तो नादिर है। अजर सवाब की नीयत से करना नादिर है। आप कहेंगे भाई कितने ही लोग हैं अजर सवाब वाले काम करते हैं, और साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि अजर सवाब की नीयत से करना तो नादिर है। तो जवाब ये कि यहां हर काम की बात नहीं हो रही, गुलाम वापस लाने की बात हो रही है। और तो इसके अंदर बे इंतहा मशक्कत है कि कई दिन की मसाफत से आप गुलाम को लेकर आए भाई, तो ये काम अजर सवाब की नीयत से करना नादिर है। और काम तो लोग कर लेते हैं अजर सवाब की नीयत से, लेकिन इसमें तो बे इंतहा मशक्कत है, बे इंतहा वक्त लगेगा और बड़ी थकन है इसके अंदर। तो इतना मुश्किल काम करना अजर सवाब की नीयत से ये नादिर है भाई, लिहाजा यहां कुछ ना कुछ खर्चा होना चाहिए। तो कहते हैं इदिल हिस्बतुन नादिरतुन, इसलिए क्योंकि इस गुलाम को अजर सवाब की नीयत से वापस करना नादिर है। फतह सुलुसियानतु अमवालिन्नासी, तो लोगों के मालों की हिफाजत हासिल होगी जब खर्चा मुकरर किया जाएगा। व तकदीरु बिस्समई, और मिकदार का मुकरर करना बिस्समई वो तो समा से होता है कि सहाबा से या हुजूर अलैहि सलाम से सुना गया हो। वला समा फी ज़ाली, और वो गुलाम जो रास्ता भूल गया है उसके अंदर तो कोई समा नहीं, उसके बारे में तो हमें कोई रिवायत नहीं मिली कि उसके बारे में भी कोई खर्चा वाजिब किया गया हो। तो कहते हैं वला समाफिय जाली, और रास्ता भूलने वाले गुलाम के अंदर तो कोई समा नहीं है। फम तना, तो लिहाजा मुमतना है कि वो गुलाम जो रास्ता खो गया है उसको आबिक के साथ मिलाया जाए या आबिक को उसके साथ मिलाया जाए, ये मुमतना है, क्योंकि एक के अंदर सीमा है और दूसरे के अंदर सीमा नहीं है। मैंने आपको बतलाया था सीमा उर्दू में सीमा इस्तेमाल होता है, अलबत्ता अरबी में यह लफ्ज समा है सीन के फतहा के साथ। आगे देखिए वली अन्नल हाजत इला सियानतिल जाली दूनहा इला सियानतिल आबिक, यहां से बतला रहे हैं कि जाल जो है उसको दलालतन भी आबिक के साथ नहीं मिलाया जा सकता। वो गुलाम जो रास्ता भूल गया है उसको दलालतन भी भागने वाले गुलाम के साथ नहीं मिलाया जा सकता। दलालतु नस आपने पढ़ा है भाई, जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि फला तकुल लहुमा उफ़िन, के वालिदैन को उफ भी ना कहो। कोई अरबी जुबान जानने वाला भी समझ लेता है कि यहां वालिदैन को उफ कहने से इसलिए मना किया जा रहा है कि इससे वालिदैन को तकलीफ होगी, तो लिहाजा हर वो काम जिससे वालिदैन को तकलीफ होगी वो ममनू होगा। जिसमें इस उफ से भी ज्यादा तकलीफ हो वो तो बतरीके औला मना होगा, जैसे गाली देना या उनको मारना। तो जब उफ कहना मना है तो गाली देना और मारना तो इसमें तो उससे भी ज्यादा तकलीफ है, ये बतरीके औला मना होगा। तो मालूम हुआ दलालत के जरिए भी एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिला दिया जाता है, एक चीज को दूसरी चीज वाला हुक्म दे दिया जाता है। तवज्जो है, लेकिन उसके अंदर जरूरी है कि वो जो दूसरी चीज है इस पहली चीज के बराबर हो या इससे भी बढ़कर हो। जैसे उफ कहने से वालिदैन को तकलीफ है, तो कोई ऐसा लफ्ज जिसमें वालिदैन को इसी तरह तकलीफ हो या इससे बढ़कर तकलीफ हो तो उसका भी यही हुक्म होगा, वो भी ममनू होगा, हराम होगा भाई। तो यहां पर बात चल रही है एक अब्दे आबिक है और एक अब्दे जाल है। तो अब्दे आबिक वो भागा हुआ गुलाम, उसके अंदर शरीयत ने खर्चा देने का हुक्म दिया है, और अब्दे ज़ाल जो है वो जो रास्ता भूला हुआ गुलाम है उसके अंदर कोई रिवायत वगैरह नहीं है। लेकिन उस अब्दे ज़ाल को दलालतन भी हम अब्दे आबिक के साथ नहीं मिला सकते, कि हम यूं कहें कि अब्द आबिक में चूंकि 40 दिरहम देने पड़ते हैं, लिहाजा अब्द जाल जो है वो गुलाम जिसे रास्ता भूल गया है उसमें भी इसी तरह 40 दिरहम देने पड़ेंगे। नहीं, हम दलालतन भी अब्द जाल को अब्द आबिक के साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि दलालतन भी एक चीज को दूसरी चीज के साथ उस वक्त मिलाया जाता है जब वो दूसरी चीज पहली के बराबर हो या उससे बढ़कर हो। लेकिन जाल के अंदर हिफाजत की हाजत कम है, क्योंकि उसकी आदत भागना नहीं है, वो मालिक को किसी ना किसी तरह मिल ही जाएगा भाई। जबकि आबिक जो है उसको तो भागने की आदत है, वो तो आका से छुपता फिरेगा, लिहाजा उसके अंदर हिफाजत की हाजत ज्यादा है। तो आबिक के अंदर हिफाजत की हाजत ज्यादा, और वो गुलाम जो रास्ता भूल गया है उसके अंदर हिफाजत की हाजत कम है, तो लिहाजा इस अब्द ज़ाल को आबिक का हुक्म नहीं दिया जा सकता दलालतन भी। भाई बात समझ में आ गई, ये माना है वली अन्नल हाजत इला सियानति ज़ाली, और इसलिए क्योंकि ज़ाल की हिफाजत की जो हाजत है दू नहा इला सियानतिल आबिकी। यह इबारत पे नजर रखें भाई, दू नहा यह हा जमीर भी हाजत को राजे है, दू नहा ऐ दून अल हाजति इला सियानतिल आबिकी। इधर देखिए, एक है हाजत इला सियानति ज़ाल और एक है हाजत इला सियानतिल आबिक। तवज्जो है, एक है ज़ाल की हिफाजत की हाजत और एक है आबिक की हिफाजत की हाजत। भाई तो कौन सी हाजत कम है? ज़ाल की हिफाजत की हाजत कम है, तो ये आबिक की हिफाजत की हाजत के बराबर नहीं, लिहाजा दलालतन भी ज़ाल को आबिक का हुक्म नहीं दिया जा सकता। तो कहते हैं वली अन्नल हाजत इला सियानति ज़ाली, और इसलिए क्योंकि रास्ता भूले हुए की हिफाजत की जो हाजत है दूनल हाजति इला सियानतिल आबिकी, वो भागे हुए गुलाम की हिफाजत की हाजत से कम है, तो लिहाजा दलालतन भी नहीं मिला सकते। लिअन्नहु ला यतवारा, इसलिए क्योंकि भागा हुआ गुलाम जो है ला यतवारा वो छुपता नहीं है, वल आबिकु यख्तफी, और भागा हुआ गुलाम जो है यख्तफी वो छुप जाता है, व युकद्दरु रज़्ख़ु फ़ि रद्दि अम्मा दूना सफ़रि बिस्तिलाहिहिमा। भाई तीन दिन की मसाफत से जो लाएगा उसके अंदर तो 40 दिरहम दिए जाएंगे, और उससे कम के अंदर कितना दिया जाएगा? मतन में तो आ गया कि उसके हिसाब से ही खर्चा दिया जाएगा। साहिब हिदाया वजाहत फरमा रहे हैं कि इसके अंदर जितने माल पर यह वापस लाने वाला और गुलाम का आका इत्तेफाक कर लें, सुलह कर लें, जितने माल पर दोनों आपस में सुलह कर लें बस वही काफी है, या ये काजी की राय के सुपुर्द है, काजी जितना हुक्म दे दे उतना खर्चा उस लाने वाले को दिया जाएगा। और या फिर तीसरी सूरत यह है कि तीन दिन की मसाफत पर 40 दिरहम है तो हर दिन उसी के हिसाब से हिसाब लगा लिया जाए, यानी हर दिन का खर्चा 13 दिरहम और सुलुसे दिरहम जो है वो अदा किया जाए। तो कहते हैं वह युकद्दरुर रज़्ख़ु, रज़ाखा यरज़ाखू का माना होता है माल का कुछ हिस्सा देना, थोड़ा सा हिस्सा देना, वह युकद्दरु रज़्ख़ु फिर रद्दी, और थोड़ा सा माल देने का अंदाजा लगाया जाएगा, फिर रद्दी अम्मा दूना सफरी, सफर से कम के अंदर वापस करने में, बिस्तिलाहिहिमा दोनों की सुलह से, बिस्तिलाहिहिमा दोनों की सुलह से, जीतने पर ये दोनों ये मालिक और वापस लाने वाला सुलह कर लें। फिर तर्जमा देख लीजिए, वह युकद्दरु रज़्ख़ु फिर रद्दि अम्मा दूनी सफरी बिस्तिलाहिहिमा, और थोड़ा सा माल मुकरर किया जाएगा सफर से कम के अंदर वापस करने में इन दोनों की सुलह के जरिए, इन दोनों की सुलह से, औ युफव्वज़ु इला रायिल काजी, या ये काजी की राय के सुपुर्द किया जाएगा जितना वो हुक्म दे दे, वकीला और कहा गया है युक्समुल अरबाउना अलल अय्यामि सलासती कि 40 को तकसीम किया जाएगा तीन दिनों पर, इस या अकल्लु मुद्दत सफरी, इसलिए क्योंकि ये कम से कम मुद्दत सफर है। आगे देखिए, काला व इन कानत कीमत हु अकल मिन अरबाइन युक्जा लहू बी कीमती ही इल्ला दिरहमा। भाई सूरत मसला यह कि एक शख्स किसी दूसरे के भागे हुए गुलाम को पकड़ कर ले आया, अब इसके अंदर खर्चा 40 दिरहम देना पड़ता है, लेकिन उस गुलाम की अपनी कीमत 40 दिरहम से भी कम है। मसलन उस गुलाम की कीमत है 35 दिरहम भाई, 5 कम 40 भाई, तो 35 दिरहम उस गुलाम की कीमत है, तो क्या अब भी आका को 40 दिरहम देने पड़ेंगे? तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हां, ये जो मिकदार है इसकी बुनियाद सीमा पर है, हमने सहाबा से इसी तरह सुना है, लिहाजा 40 ही देने पड़ेंगे, न इससे कम कर सकते हैं न इससे ज्यादा कर सकते हैं। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं गुलाम अगर कम कीमत वाला है और 40 दिरहम देने का हुक्म दिया जाए तो इसमें तो उस बेचारे आका का नुकसान है कि गुलाम जो वापस मिला है वो 35 दिरहम वाला है और आका को 40 दिरहम अदा करने पड़ेंगे, लिहाजा जो गुलाम की कीमत है उससे 1 दिरहम कम कर दिया जाएगा। गुलाम 35 दिरहम का है तो आका इस लाने वाले को 34 दिरहम अदा करेगा, ताकि कम से कम आका का फायदा तो साबित हो
जी।
इस गुलाम के वापस लाने का उसे फायदा तो हो भाई कि 1 दिरहम तो बच गया उसका भाई। तो काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं व इनकानत कीमत हु अकल लमीन अरबाइना, और अगर उस गुलाम की कीमत 40 दिरहम से कम है युकजा लहू बी कीमत ही इल्ला दिरहमन, तो उस वापस लाने वाले के लिए फैसला किया जाएगा उसी गुलाम की कीमत का इल्ला दिरहमन मगर 1 दिरहम, यानी 1 दिरहम कम उसकी कीमत से, 1 दिरहम कम का फैसला किया जाएगा। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं और अगर उस गुलाम की कीमत 40 दिरहम से कम है तो युक्जा लहू बी कीमत ही इल्ला दिरहमन, तो उस वापस लाने वाले के लिए फैसला किया जाएगा उस गुलाम की कीमत का मगर 1 दिरहम, यानी 1 दिरहम कम करके। قال رضي الله تعالى عنه, इस काला से मुराद साहिब हिदाया हैं। قال رضي الله تعالى عنه, साहिब हिदाया फरमाते हैं وهذا قول محمد رحمه الله, और ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का कौल है। इमाम मैंने बताया, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तो फरमाते हैं कि जो मकदार मुकर्रर है उसमें न कमी की जा सकती है और न ज्यादती। कहते हैं वहादा कौलु मोहम्मद इन रहिमहुल्ला, और ये इमाम मोहम्मद रहमला का कौल है। व काल अबू यूसुफ रहिमहुल्लाहु ताला, और इमाम अबू यूसुफ रहमला फरमाते हैं लहू अरबाउन दिरहमन, के उसके लिए 40 दिरहम ही होंगे। लिअन्न तकदीर बिहा सबता बिन नस्सी, इसलिए क्योंकि 40 दिरहम के साथ मुकर्रर करना सबता बिन नस्सी, ये नस से साबित है, और जो चीज नस से साबित हो उसमें कमी या ज्यादती नहीं की जा सकती, तो ये नस से साबित है। फला युन कसु अनहा, लिहाजा इससे कम नहीं किया जा सकता। व लिहाजा ला यजूजु सुल्हु अला ज़ियादती, और इसी वजह से इससे ज्यादा पर सुलह भी जायज नहीं है, इससे ज्यादा पर सुलह भी जायज नहीं है। बिखिलाफ इस्सुल्ह अलल अकल्ली, बखिलाफ इससे कम पर सुलह। लिअन्नहु हत्तुम मिनहु, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इससे कम भी नहीं किया जा सकता। हां, दोनों अगर आपस में कम पर सुलह कर लेते हैं, आका और वापस लाने वाला इससे कम पर सुलह कर लेते हैं, तो फिर जायज है। और इसको यूं समझेंगे कि जैसे वो वापस लाने वाले ने कुछ हिस्सा माफ कर दिया, उसका हक तो कितना बनता था 40 दिरहम, लेकिन उसने 30 दिरहम मसलन 30 दिरहम पर वो राजी हो गया, तो मालूम हुआ उसने अपने हक में खुद कमी कर दी, और उसको तो हक है, वो चाहे तो कुछ भी वसूल ना करे, सारा हक ही अपना साकित कर दे भाई। वलिहादा ला यजूजु सुल्हु अला ज़ियादती, और इसीलिए ज्यादा पर सुलह जायज नहीं। बिखिलाफ इस्सुल्ह अलल अकल्ली, बखिलाफ कम पर सुलह करने के। लिअन्नहु हत्तुम मिनहु, इसलिए क्योंकि ये उस वापस लाने वाले की तरफ से कम करना है। वली मोहम्मद इन रहिमहुल्ला, और इमाम मोहम्मद रहमला की दलील यह है, इमाम मोहम्मद रहमला फरमाते हैं कि गुलाम की कीमत से 1 दिरहम कम का फैसला किया जाएगा। वली मोहम्मद इन रहिमहुल्ला, और इमाम मोहम्मद रहमला की दलील यह है कि अन्नल मकसूद हमलुल गैरी अलर रद्दी, कि ये जो खर्चा है इसके जरिए मकसूद दूसरों को वापसी पर उभारना है, इसके जरिए दूसरों को वापसी पर उभारना है। कहते हैं अन्नल मकसूद हमलुल गैरी अलर रद्दी, कि इस खर्चे के जरिए मकसूद जो है दूसरों को इस गुलाम के वापस करने पर उभारना है। लियहया मालुल मालिकी, ताकि मालिक का माल जिंदा रहे। फयुन कसु दिरहमुन, तो लिहाजा 1 दिरहम कम कर दिया जाएगा। लियसलम लहू शयउन, ताकि मालिक के लिए कोई चीज तो सलामत रहे। तहकीकन लिल फाइदती, फायदे को साबित करने के लिए, फिर तर्जमा देख लीजिए, फयुन कसु दिरहम, तो एक दिरहम कम कर दिया जाएगा, लियसलम लहू शय उन तहकीकन लिल फाइदती, ताकि मालिक के लिए कुछ सलामत रहे फायदे को साबित करने के लिए, वरना अगर उतनी ही कीमत देगा तो इसमें तो मालिक का कोई फायदा नहीं है भाई। वह उम्मुल वलदी वल मुदब्बरु फी हादा बिमंजिलतिल किन्नी, भाई ये तो आम गुलाम का हुक्म था कि उसके वापस लाने में 40 दिरहम दिए जाएंगे। अगर कोई मुदब्बर को ले आता है, वो गुलाम जिसे आका ने कहा है तू मेरे मरने के बाद आजाद है, या उम्मे वलद को ले आता है जो आका के बच्चों की मां बांदी जो है, जो आका के मरने के बाद आजाद हो जाएगी, तो आपको साहिब हिदाया बतलाएंगे कि उम्मे वलद और मुदब्बर का भी यही हुक्म है जब आका की जिंदगी में कोई इनको वापस लाए, और अगर आका के मरने के बाद कोई इनको वापस लाता है फिर कोई खर्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि आका के मरते ही ये तो आजाद हो चुके हैं, ये आजाद हो चुके हैं। कहते हैं वह उम्मुल वलदी वल मुदब्बर फी हाजा, और उम्मे वलद और मुदब्बर जो हैं फी हाजा इसके अंदर, यानी जोल यानी खर्चे के वाजिब होने में, भी मंजिलतिल किन्नी, ये आम गुलाम के दर्जे में है। इदा कान रद्द फी हयातिल मौला, जब वापस करना आका की जिंदगी में हो, लिमा फी ही मिन इहया इमिल की ही, इसलिए क्योंकि इसके अंदर उसकी मिल्कियत को जिंदगी देना है। वला रुद्द बाद ममाती ही, और अगर ये मुदब्बर या उम्मे वलद को आका की मौत के बाद वापस किया गया, ला जो अलफीहा, तो इसके अंदर फिर खर्चा नहीं होगा, ले अन्नहुमा यातिकानी बिल मौती, इसलिए क्योंकि ये दोनों तो आका की मौत की वजह से आजाद हो जाते हैं, बिखिलाफ इल्किन्नी, बखिलाफ आम गुलाम के, कि उसमें आका के मरने के बाद भी लाए तो फिर भी वहां खर्चा देना पड़ेगा। वलौ काना रादु अबल मौला अभी बनाहू वहुआ फी अयालिही औ अहदु ज़ौजैनी अलल आखर, भाई अब वो वापस लाने वाला अगर आका का बाप है जी, या आका का बेटा है जी, या मियां बीवी में से एक है, बीवी का गुलाम था, खावंद उसको ले आया कहीं से पकड़कर, तो क्या इनको भी खर्चा मिलेगा या नहीं? तो आपको बतलाएंगे कि अगर बाप जो है, बाप अगर वो इसी आका के जेरे कफालत है, अपने बाप का खर्चा वो ही उठाता है, तो फिर इस सूरत के अंदर बाप को वो जुअल नहीं मिलेगा जी। और बाकी जो बेटा लाए या मियां बीवी में से कोई एक ले आता है तो उसके अंदर भी वो जुअल नहीं दिया जाएगा। वजह यह है कि इंसान का जब गुलाम भाग जाए तो सबसे पहले वो जो उसके जेरे कफालत होते हैं उन्हीं की मदद से उसको तलाश करता है, जो उसके जेरे कफालत होते हैं, जो उसका बेटा है, उसका बाप है, तो ये इन्हीं की मदद से तो वो इनको तलाश करता है, लिहाजा ये उस गुलाम को तलाश करने में और उसको लाने में मुतबर्रे शुमार किए जाते हैं। उर्फ इसी पर जारी है, लोगों की आदत ही इसी तरह है भाई, लिहाजा इनके लिए खर्चा नहीं होगा। हां अगर बाप जो है वो उस आका के जेरे कफालत नहीं है, आका का बाप है लेकिन उसका खर्चा आका नहीं उठाता, वो आका के जेरे कफालत नहीं है, तो आका का ये बाप जो है अगर ये गुलाम को ले आता है तो फिर उसको जोल दिया जाएगा भाई। तो कहते हैं वलौ काना रादु अबल मौला, और अगर वापस करने वाला वो उस आका का बाप है, अभी बना हु या उसका बेटा है, वह हुआ फी अयालिही, इस हाल में कि वो उसकी जेरे कफालत है, ये इसका ताल्लुक बाप से है भाई, वह हुआ फी अयालिही, इस हाल में कि बाप उसकी कफालत में है, बेटा चाहे कफालत में हो या ना हो, तवज्जो है, वहां जोल नहीं आएगा भाई। तो कहते हैं वह हुआ फी अयालिही, इस हाल में कि बाप उसके जेरे कफालत है, औ अहदु ज़ौजैनी अलल आखरी, या मियां बीवी में से कोई एक जो है वह दूसरे पर वापस करता है, फला जोला, तो फिर वह जोल नहीं होगा, लिअन्नहा उलाई यतबर्रऊन बिर्रद्द आदतन, इसलिए क्योंकि ये लोग जो हैं आदतन वापस करने में मुतबर्रे होते हैं, वला यतनावलुहुम इतलाकुल किताबी, और किताब का इतलाक इनको शामिल नहीं है, किताब यानी मुख्तसरुल कुदूरी, कुदूरी के मतन पीछे आया था, कालब मन रद्द आबिकन अला मौलाहू, जो अपने आका पर भागे हुए गुलाम को वापस करे, मिम मसीरती सलासती अयामिन फसाइदन, तीन दिन या उससे जायद की मसाफत से, फलहू अलैही जुलहू अरबऊना दिरहमन, तो उस वापस करने वाले के लिए आका पर 40 दिरहम का जुअल है। तो कुदूरी में तो मुतलक जिक्र है, जो भी वापस लाएगा उसको 40 दिरहम का जुअल मिलेगा। लेकिन कहते हैं कुदूरी का यह इतलाक इन अफराद को शामिल नहीं जो हमने जिक्र कर दिए, ये बेटा है या बाप है या अहदुज़ौजैन है भाई। तो कहते हैं वला यतनावलहुम इतलाकुल किताबी, और इस किताब यानी ये जो कुदूरी है इसका मुतलक होना ये इनको शामिल नहीं है। आगे देखिए قال وان ابقى من الذي رده فلا شيء عليه, भाई एक शख्स एक गुलाम को पकड़कर आका के पास ले जा रहा है और इस शख्स से वो गुलाम भाग गया, ये जो वापस ला रहा है इससे वो गुलाम भाग गया, तो क्या इस पर कोई जमान आएगा? कहते हैं भाई कि ये गुलाम जो है, ये भागा हुआ गुलाम जिसने पकड़ा है, ये गुलाम भी लुक्ते की तरह है, और जैसे लुक्ते के अंदर गवाह बनाए जाते हैं, लुक्ता मिल जाए तो उस पर तरफैन के नजदीक गवाह बनाना जरूरी है, तो अगर इसने गवाह बनाए थे तो फिर इस पर कोई जमान नहीं आएगा, क्योंकि मालूम हुआ जब इसने गवाह बना लिए मालूम हुआ ये आका को वापस देने के लिए उसने इस गुलाम को पकड़ा है, और अगर इसने गवाह नहीं बनाए मालूम हुआ इसने गुलाम को अपने लिए पकड़ा है। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह इन अबका मीन अल्लदी रद्दहू, और अगर वो गुलाम भाग गया उस आदमी से जो इसको वापस कर रहा है, फला शई अलैही, तो उस शख्स पर कोई चीज नहीं है, यानी उस वापस लाने वाले पर कोई जमान नहीं है। लिअन्नहू अमानतुन फी यदिही, इसलिए क्योंकि ये गुलाम उसके कब्जे में अमानत है। लाकिन हादा इदा अशहदा, लेकिन ये उस वक्त है जब उसने गवाह बनाए हों। वकद जकर ना हो फिल लुकतति, और तहकीक के बाद हम लुकता में जिक्र कर चुके हैं। قال رضي الله تعالى عنه, इससे मुराद साहिब हिदाया हैं। قال رضي الله تعالى عنه, साहिब हिदाया फरमाते हैं, وذكر في بعض النسخ انه لا شيء له وهو صحيح ايضا, भाई यहां तो मतन में आया, पीछे मतन में क्या आया था? قال وان ابقى من الذي رده, अगर ये गुलाम भाग गया उस आदमी से जो इसको वापस कर रहा है, فلا شيء عليه, फलाशई अलई ही, तो इस वापस लाने वाले पर कुछ नहीं, यानी इस पर जमान नहीं। जबकि कुदूरी के बाद नुस्खों में यहां अलई ही के बजाय लहू है कि वापस लाने वाले से अगर गुलाम भाग गया, फलाशई अलहू, फिर उसके लिए कुछ नहीं, यानी उसे खर्चा नहीं मिलेगा, उस वापस लाने वाले को खर्चा नहीं मिलेगा। तो बाद नुस्खों में यह इबारत है, साहिब हिदाया फरमाएंगे ये इबारत भी ठीक है, यह इबारत भी ठीक है कि अगर गुलाम इसने वापस ही नहीं पहुंचाया, इससे भाग गया है, तो खर्चा किस चीज का इसे मिलेगा भाई? तो कहते हैं काला रजी अल्लाह ताला अनहु, साहिब हिदाया फरमाते हैं, वजू की रफी बाजिन नुसखी, और कुदूरी के बाद नुस्खों में जिक्र किया गया है कि अन्नहू लाशई अलहू, कि वापस लाने वाले से अगर गुलाम भाग गया तो उसके लिए कोई चीज नहीं है। वह हुआ सही हुन अयजन, और ये भी सही है। लि अन्नहू फी मानल बाई मिनल मालिकी, इसलिए क्योंकि ये मालिक पर बेचने वाले के माना में है। ये जो गुलाम को वापस ला रहा है, ये गोया गुलाम को इसने नई जिंदगी दे दी है आका के हक में। आका के लिए तो ये गुलाम हलाक हो गया था, उससे उसके हाथ से निकल गया था, तो गोया वापस लाने वाला गुलाम को नई जिंदगी दे रहा है आका के लिए। तो जब ये गुलाम वापस आका को देगा तो गोया आका को नई मिल्कियत हासिल हो रही है इस गुलाम पर, उसके लिए तो ये गुलाम हलाक हो चुका था, तो आका को नई मिल्कियत हासिल हो रही है। जैसे बैअ के अंदर, बैअ के अंदर एक आदमी दूसरे से इजाब और कबूल करता है तो उसको मबीए पर मिल्कियत हासिल हो जाती है। तो मालूम हुआ यहां पर भी वापस लाने वाला वो बाएअ के दर्जे में है कि उसकी तरफ से आका को नई मिल्कियत हासिल हो रही है, जैसे बैअ के अंदर खरीदार को नई मिल्कियत हासिल होती है। तवज्जो है, तो मालूम हुआ वापस लाने वाला बाय के दर्जे में है, और बाय के पास अगर मबिया हलाक हो जाए तो मुश्तरी पर से समन भी साकित हो जाते हैं जी। जब मबिया ही उसको नहीं मिला तो वो समन किस चीज के देगा? तो यहां पर भी ये वापस लाने वाला बाय के दर्जे में है, तो जब वो गुलाम ही इसके पास हलाक हो गया तो यूं समझो मबिया ही हलाक हो गया। जब मबिया हलाक हो गया तो वह आका किस चीज का खर्चा इसको दे भाई जी। तवज्जो है जी। तो कहते हैं लिअन्नहु फी मानल बाइअ मिनल मालिक, भाई बाइअ के बाद आ रहा है मिनल मालिक। मैंने आपको बतलाया था बाअ यबीउ का सिला मिन आता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैंने जैद के हाथ ये किताब बेची है, तो मैं कहूंगा बिअतु मिन जैदिन, जैसे इश्तराइतु कहते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं मैंने जैद से ये किताब खरीदी है, तो मैं कहूंगा इश्तराइतु मिन जैदिन, मैंने जैद से खरीदी है। तो जब इश्तरा के साथ मिन सिला इस्तेमाल होता है तो बा के साथ भी अरबी में मिन सिला ही इस्तेमाल होता है। तो मैं बतलाना चाहता हूं मैंने जैद के हाथ ये किताब बेची है, तो मैं कहूंगा बिअतु मिन जैदिन, तवज्जो है। तो यहां भी इबारत इसी तरह है लिअन्नहु फी मानल बाइअ मिनल मालिकी, इसलिए क्योंकि वापस लाने वाला वो मालिक के हाथ बेचने वाले के माना में है, मालिक के हाथ उस गुलाम को बेचने वाले के दर्जे में है। वलिहादा कान लहू अन यहबिसल आबिका, और इसीलिए वापस लाने वाले के लिए जायज है कि वो उस भागे हुए गुलाम को रोक ले हत्ता यस्तौफियल जुअला, यहां तक कि वो जुअल वसूल कर ले। जिस तरह बाय अपना मबीहा रोक सकता है समन वसूल करने के लिए, इसी तरह ये वापस लाने वाला इस भागे हुए गुलाम को रोक सकता है जुअल वसूल करने के लिए। कहते हैं वलिहादा कान लहू अन यहबिसल आबिका, और इसीलिए वापस लाने वाले के लिए जायज है कि वो उस भागे हुए गुलाम को रोक ले हत्ता यस्तौफियल जुअला, यहां तक कि वो उस जुअल को वसूल कर ले बिमंजिलतिल बाइअ, उस बाय के दर्जे में यहबिसुल मबीआ, जो मबीआ रोक लेता है लिस्तीफा इस समन, समन वसूल करने के लिए। वकदालिका इदा मात फी यदिही, और इसी तरह अगर ये भागा हुआ गुलाम उस वापस लाने वाले के कब्जे में मर गया तो ला शैआ अलैही, तो इस पर कुछ नहीं है यानी इस पर जमान नहीं आएगा लिमा कुलना, उस वजह से जो हमने कहा क्योंकि ये अमानत के दर्जे में है जब इसने इस पर गवाह बना लिए थे। भाई आगे देखिए قال ولو اعتقه المولى كما لقيه سارقا بزم بالاعتاق, भाई इन्होंने आपको बतला दिया कि वापस लाने वाला वो गुलाम आका के हवाले करेगा, आका के कब्जे में देगा, तो अब इसको जुअल मिलेगा। अगर उससे पहले वो गुलाम मर गया वो या वो भाग गया तो फिर इसको जुअल भी नहीं मिलेगा। अब सूरत मसला ये है कि एक आदमी गुलाम को लेकर आया आका के पास कि मैं ये तुम्हारा भागा हुआ गुलाम ले आया हूं, आका ने कब्जा करने से पहले ही उस गुलाम को आजाद कर दिया कि मेरी तरफ से ये आजाद है, तो क्या अब भी जौल देना पड़ेगा? कहते हां, आका का आजाद करना ये भी कब्जे ही के हुक्म में है, गोया यूं समझाया जाएगा आका ने पहले कब्जा किया और फिर उसको आजाद कर दिया, तो लिहाजा यहां हकीकतन तो कब्जा नहीं किया आका ने लेकिन हुक्मन कब्जा शुमार होगा। काला इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं वलौ आतकहुल मौला, और अगर आका ने उस गुलाम को आजाद कर दिया कमा लकियहु, जैसे ही उससे मिला, जैसे ही उस लाने वाले से मिला उसने गुलाम को आजाद कर दिया, सारका बिजम बिल इताकी, तो आका कब्जा करने वाला हो गया इताक की वजह से, इन हुक्मन वो कब्जा करने वाला शुमार होगा। कमाफिल अब्दिल मुश्तरा, जैसे कि उस गुलाम के अंदर जिसको खरीदा गया है, जिसको खरीदा गया है। सूरत मसला ये कि एक शख्स ने दूसरे से गुलाम खरीदा और खरीदने के बाद मुश्तरी ने अभी गुलाम पर कब्जा नहीं किया, कब्जे से पहले ही वो मुश्तरी गुलाम को आजाद कर देता है, तो इस सूरत में भी वो गुलाम आजाद हो जाएगा और यूं समझा जाएगा कि मुश्तरी ने पहले गुलाम पर कब्जा किया और फिर उसको आजाद किया है, तो यहां भी हुक्मन कब्जा साबित होगा। भाई तो कहते हैं कमा फिल अब्दिल मुश्तरा, जैसे कि उस गुलाम के अंदर जिसको खरीदा गया हो उसको भी अगर कब्जे से पहले आजाद करेगा तो वहां भी हुक्मन कब्जा शुमार होगा। भाई वकदा इदा बाहु मिनर रात दिली सलामतिल बदली लहू, दूसरी सूरत भाई वो शख्स भागा हुआ गुलाम वापस ले आया आका के पास, आका ने गुलाम पर कब्जा करने से पहले ही उस वापस लाने वाले के साथ गुलाम की बैअ कर ली कि ये गुलाम मैं तुम्हें बेचता हूं इतने पैसों के बदले में, और उसने कबूल कर लिया, उन्होंने आपस में बैअ कर ली, तो इस सूरत के अंदर भी आका को जौल देना पड़ेगा क्योंकि यहां भी क्योंकि यहां भी आका को गुलाम के समन मिल रहे हैं, वो सलामत मिल रहे हैं, तो यूं ही समझा जाएगा आका ने गुलाम पर कब्जा किया और फिर उसने इस वापस लाने वाले के हाथ उसे फरोख्त कर दिया। तो कहते हैं वकदा इदा बाहू मीनर रात दी, और इसी तरह है हुक्म, यानी आका को हुक्मन कब्जा करने वाला शुमार करेंगे, इदा बाहू मीनर रात दी, जब आका उस गुलाम को बेच दे वापस लाने वाले के हाथ, लि सलामतिल बदल लहू, इसलिए क्योंकि आका के लिए उसका बदल यानी समन सलामत रहे, आका को उसके समन मिल रहे हैं, लिहाजा यूं ही समझेंगे गोया आका ने कब्जा करने के बाद बेचा है तो आका को खर्चा देना पड़ेगा भाई। वर रद्दु व इनका न लहू हुक्मुल बैई, यहां से एक एतराज का जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया। एतराज यह होता है कि यहां पर आका ने गुलाम पर कब्जा किए बगैर ही वापस लाने वाले के हाथ बेच दिया, वापस लाने वाला गुलाम लाया, आका ने गुलाम पर अभी कब्जा नहीं किया और उससे पहले ही उसके हाथ उसको फरोख्त कर दिया, हालांकि हदीस के अंदर मना किया गया है उस चीज को बेचने से जो इंसान के कब्जे में ना हो। जो चीज अभी आपके कब्जे में नहीं आई उसके बेचने से मना किया गया है। मसलन आप किसी से कोई चीज खरीदते हैं, मसलन आपने एक आदमी से 100 मन गंदुम खरीद ली, अभी आपने गंदुम पर कब्जा नहीं किया, उससे पहले ही ये गंदुम आप जैद के हाथ बेचना चाहते हैं, नहीं भाई आपके लिए जायज नहीं है। जब तक वो चीज आपके कब्जे में नहीं आ जाती उस वक्त तक आपके लिए आगे बेचना जायज नहीं है। सूरत समझ में आ रही है? तो हदीस के अंदर जो चीज इंसान के कब्जे में ना हो उसके बेचने से मना किया गया है, लिहाजा आप जो चीज भी आगे बेचना चाहते हैं तो पहले उस चीज पर कब्जा शर्त है। तो यहां एतराज होता है कि आपने हमें बताया कि भागे हुए गुलाम को यह आदमी वापस ला रहा है, और यह वापस लाना और आका के हवाले करना आपने हमें बताया यह भी बैअ के दर्जे में है, क्योंकि गुलाम को नई जिंदगी मिली है, तो गोया आका नया मालिक बन रहा है इस गुलाम का जी। तो यह किसके दर्जे में, ये जो आका को वापस किया जाएगा यह किसके दर्जे में है? यह बैअ के दर्जे में है, और जब यह बैअ के दर्जे में है तो आका के लिए जरूरी है इस गुलाम पर पहले कब्जा करे और फिर वो इस वापस लाने वाले के हाथ इसको बेच सकता है। तवज्जो है? आपने हमें मसला बताया कि वापस लाने वाला उस गुलाम को वापस लाया और आका ने अभी उस गुलाम पर कब्जा नहीं किया, उससे पहले ही उसके हाथ बेच देता है जी। तो यह बेचना तो जायज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हदीस में मना किया गया है ऐसी चीज के बेचने से जिस पर इंसान का कब्जा ना हो। इश्काल समझ में आ रहा है? तो उसका जवाब देंगे साहिबे हिदाया कि ये जो वापस लाना है हमने कहा ये बैअ के दर्जे में है, यह चूंकि हकीकतन बैअ नहीं है, हां बाज एतबार से बैअ है कि यूं समझो आका को नई मिल्कियत हासिल हो रही है, क्योंकि उसके लिए तो गुलाम हलाक ही हो गया था, तो ये बैअ नहीं है, बैअ के दर्जे में है। तो जब यह हर एतबार से बैअ नहीं है तो यह उस नही के तहत भी दाखिल नहीं, लिहाजा यहां बेचना जायज होगा। अगर यह वापस लाना यह हर एतबार से बैअ के दर्जे में होता तो फिर बगैर कब्जे के बेचना जायज ना होता, लेकिन यह तो हर एतबार से बैअ ही नहीं है, लिहाजा यह उस नही के तहत दाखिल नहीं, इसका बेचना इस तरह जायज है बगैर कब्जे के भी भाई। तो कहते हैं वर रद्दू, और उस गुलाम का वापस करना, व इन का न लहू हुक्मुल बैई, अगरचे उसका बैअ का हुक्म है, लाकिन नहू बैअ मिन वजहिन, लेकिन वो बाज एतबार से बैअ है यानी हर एतबार से तो वो बैअ नहीं है, फला यदखुलु तख्त नहीं, लिहाजा ये उस नहीं के तख्त दाखिल नहीं, अल वारिद अन बैअ मा लम युकबज, जो वारिद हुई है उस चीज की बैअ के बारे में जिस पर कब्जा ना किया गया हो, फजाजा तो ये जायज है। फिर तर्जमा देख लीजिए, वर रद्द व इनका न लहू हुक्मुल बैअ, और ये रद्द और ये वापस करना अगरचे इसका बैअ वाला हुक्म है, लाकिन नहू बैअ मिन वजहिन, लेकिन ये बाज एतबार से बैअ है, हर एतबार से ये बैअ नहीं है, फला यदखुलु तहत नहयिल वारिदी, तो लिहाजा ये दाखिल नहीं है उस नहीं के तहत जो आई है, अन बैअ मा लम युकबज, उस चीज की बैअ के बारे में जिस पर कब्जा न किया गया हो, वो नहीं जो उस चीज के बारे में आई है जिस पर कब्जा न किया गया हो, ये उसके तहत दाखिल नहीं, फजाजा तो ये बैअ जायज होगी भाई। आगे देखिए, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वयम बगी इदा अखदहू अयुशहीदा अन्नहू या खुदहू लियरुद्दहू। अब वो गवाह बनाने वाली बात आ गई। मैंने आपको बतलाया था कि जो भागा हुआ गुलाम है ये भी किसके हुक्म में है, लुकते के हुक्म में है, लिहाजा इसके अंदर भी गवाह बनाना जरूरी है तरफेन के नजदीक। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वयम बगी इदा अखदहू, और मुनासिब है इस शख्स के लिए जब ये उस गुलाम को पकड़े, अयो शहीदा, कि ये गवाह बना ले कि अन्नहू या खुदहू लिया रुद्दहू, कि ये गुलाम को इसलिए पकड़ रहा है ताकि आका को वापस कर सके। फल इशहाद हतमुन फीही, तो इसके अंदर गवाह बनाना लाजमी है, हतमुन लाजमी, फल इशहाद हतमुन फीही, तो इसके अंदर गवाह बनाना लाजमी है। अलैही, उस पकड़ने वाले पर, अला कौली अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाह ताला, तरफेन रहिमहुमल्लाह के कौल पर, तो तरफेन के कौल पर उस पकड़ने वाले पर गवाह बनाना लाजमी है। हत्ता लौरद्दहू मल्लम युशहीद वक्त अल अख्जी। भाई तरफेन फरमाते हैं अगर पकड़ने वाले ने गवाह नहीं बनाए तो इसके लिए जुअल भी नहीं है जी। इसके लिए जुअल भी नहीं है, इसने गवाह नहीं बनाए, मालूम हुआ इसने गुलाम को अपने लिए पकड़ा था कि खुद उससे खिदमत वगैरह लेगा। तो कहते हैं हत्ता रद्दहू मल्लम युशहीद वक्त अल अख्जी, यहां तक कि अगर इस गुलाम को वापस किया उस शख्स ने जिसने इसको पकड़ते वक्त गवाह नहीं बनाए थे, तो ला जुअला लहू इंदहुमा, तो तरफेन के नजदीक इसके लिए जुअल नहीं होगा। लिअन्न तरकल इशहादी, इसलिए क्योंकि गवाह बनाने को छोड़ देना, अमारतु अन्नहू अखदहू लिनफ्सिही, ये इस बात की अलामत है कि उसने इसको अपने लिए पकड़ा है, उसने इसको अपने लिए पकड़ा है। अमारतु अन्नहू, ये अमारत का लफ्ज मुजाफ है आगे जुमले की तरफ, अन्नहू अखज़हू लिनफ्सिही, तो लिहाजा इस पर तन्वीन न पड़े भाई। लिअन्न तरकल इशहादी, इसलिए क्योंकि गवाह बनाने को छोड़ देना, अमारतु अन्नहू अखज़हू लिनफ्सिही, ये इस बात की अलामत है कि इसने इसको अपने लिए पकड़ा है। वसारा कमा इदश्तराहु मिनल आखिज़ी अवितहबहु औ वरिसहु, कहते हैं ये इसी तरह हो गया जैसे ये गुलाम किसी से खरीदा हो। तवज्जो है, एक आदमी ने गुलाम को पकड़ा है और ये उससे खरीद लेता है, जो वापस लाने वाला है ये उस पकड़ने वाले से गुलाम को खरीद लेता है, या जिसने गुलाम को पकड़ा था वो इस वापस लाने वाले को गुलाम तोहफे के तौर पर देता है और ये उसको कबूल कर लेता है, या इस गुलाम को वापस लाने वाला जो है इसको ये गुलाम विरसे में मिला है, मसलन इसके मूरिस ने इस गुलाम को पकड़ा था और फिर उसका इंतकाल हो गया और अब ये वारिस को मिला है बतौर वरासत के, तो इन सूरतों के अंदर भी इसके लिए जुअल नहीं होगा, क्योंकि जब इसने इस गुलाम को खरीदा है या इसने हिबा को कबूल किया है या इसको बतौर वरासत के मिला है, तो मालूम हुआ ये गुलाम इसने अपने लिए इस पर कब्जा किया है, और जब अपने लिए इस पर कब्जा किया है तो अब इसके लिए जुअल नहीं हो सकता, और फिर ये वापस इसलिए ला रहा है आका के पास ताकि इस पर जमान ना आए, क्योंकि अगर आका को पता चल गया तो इस आदमी पर जमान आएगा भाई, तो ये वापस आका के लिए नहीं कर रहा बल्कि अपने लिए कर रहा है कि मुझ पर जमान ना आए भाई। तो कहते हैं वसारा कमा इदश्तराहु मिनल आखिजी, और ये इसी तरह हो गया जैसे इस वापस लाने वाले ने इस गुलाम को खरीदा हो, मिनल आखिजी, उसको पकड़ने वाले से, अवितहबहू, वहाबा यहीबू का माना होता है तोहफा देना और इतहबा का माना होता है तोहफा कबूल करना, अवितहबहू, या इसने उस गुलाम को बतौर तोहफे के कबूल किया है, औ वरिसहू, या ये उसका वारिस हुआ है। तवज्जो है, तो ये तीनों सूरतें, चाहे इसने गुलाम खरीदा है या तोहफा कबूल किया है या उसका वारिस हुआ है, फरद्दहू अला मौलाहू, फिर इसने गुलाम उसके आका पर वापस कर दिया, ला जुअला लहू, तो इस आदमी के लिए जुअल नहीं होगा, लिअन्नहू रद्दहू लिनफ्सिही, इसलिए क्योंकि ये गुलाम उसने अपने लिए वापस किया है कि मुझ पर जमान ना आए, इल्ला इदा अशहदा, हां जब यह गवाह बना ले, मसलन खरीदने लगा है या तोहफा मिला और यह गवाह बना लेता है कि यह मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं असल मालिक को वापस कर दूं, तो फिर इस सूरत में इसको जोल मिलेगा। हां, अलबत्ता उस गुलाम के समन नहीं मिलेंगे, खरीदते हुए इसने किसी को गवाह बना लिया कि मैं ये आका के लिए खरीद रहा हूं गुलाम, तो अब जोल तो मिलेगा लेकिन गुलाम के समन और पैसे जो इसने अदा किए हैं खरीदते हुए वो आका से नहीं ले सकता, उस समन की अदायगी में यह मुतबर्रिअ है भाई। तो कहते हैं इल्ला इदा अशहदा अन्नहु इश्तराहु लियरुद्दहु, मगर यह कि जब यह गवाह बना ले कि इसने इस गुलाम को खरीदा है ताकि इसको वापस करे, फयकूनु लहुल जुअलु, तो फिर इस सूरत में इसके लिए जुअल होगा, वह हुआ मुतबर्रिउन फी अदा इस्समनी, और अदा इस्समन के अंदर यह मुतबर्रिअ है, समन इसको नहीं मिलेंगे। आगे देखिए फइन कानल आबिकुर रहनन, भाई सूरत ये कि ये जो गुलाम भागा है ये किसी के पास बतौर रहन के रखवाया गया था, मसलन जैद का गुलाम है, जैद को कर्ज की हाजत पेश आ गई, उसने किसी से कर्ज मांगा तो उस शख्स ने कहा मेरे पास कोई चीज बतौर रहन के रखवाओ, जैद ने अपना ये गुलाम उसके पास बतौर रहन के रखवाया और उससे कर्जा ले लिया और फिर मुर्तहिन के पास से यह गुलाम भाग गया, तो अब इस गुलाम को वापस लाएंगे तो खर्चा किसको देना पड़ेगा, मालिक को या मुर्तहिन को? कहते हैं खर्चा मुर्तहिन को देना पड़ेगा, खर्चा मुर्तहिन को देना पड़ेगा क्योंकि इस मुर्तहिन ने इस गुलाम को अपने पास रोका हुआ था अपना कर्जा वसूल करने के लिए, तवज्जो है, लिहाजा मुर्तहिन को हाजत है कि गुलाम उसके कब्जे में रहे ताकि वो अपना कर्जा वसूल कर सके, लिहाजा ये जो जुअल है ये मुर्तहिन को अदा करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। और फिर इसमें याद रखना ये जो रहन होता है ये मजमून होता है बिकद्री दैन, भाई रहन मजमून होता है बिकद्री दैन। मसलन एक आदमी दूसरे से कर्ज लेने गया कि मुझे इतना कर्ज चाहिए, वो कहता है कि मेरे पास कोई चीज बतौर रहन के रखवाओ, तो इसने जो चीज रहन रखवाई है उसमें तीन एहतमाल हैं, हो सकता है जो चीज रहन रखवाई है उसकी कीमत भी उस कर्जे के बराबर है, और हो सकता है इस चीज की कीमत कर्जे से कम हो, और हो सकता है इस चीज की कीमत उस कर्जे से ज्यादा हो। तवज्जो है, रहन अगर मुर्तहिन के पास हलाक हो जाए तो मुर्तहिन पर जमान आता है, कितना जमान आएगा? तो याद रखो जाब्ता यह है कि रहन मजमून होता है बिकद्री दैन, यानी दैन के बराबर जी। दैन के बराबर। मसलन एक आदमी ने 10 लाख कर्जा लिया और अपनी 10 लाख वाली गाड़ी ही उसके मुर्तहिन के पास रखवा दी, तो अगर मुर्तहिन के पास यह गाड़ी हलाक हो गई तो गाड़ी की कीमत कितनी? 10 लाख, और कर्जा भी कितना था? 10 लाख। तो गोया मुर्तहिन ने अपने 10 लाख वसूल कर लिए, भाई हिसाब बराबर हो गया, अब मुर्तहिन पैसों का मुतालबा नहीं कर सकता। और अगर कर्जा था 10 लाख और इसने जो गाड़ी रखवाई है वो 5 लाख वाली है, उसकी कीमत कम है, तो फिर ये गाड़ी 5 लाख की है तो मुर्तहिन के पास अगर ये गाड़ी हलाक हुई तो इस सूरत में फिर कर्जे में से भी 5 लाख ही साकित हो जाएंगे। तवज्जो है, क्योंकि गाड़ी की कीमत ही 5 लाख है तो कर्जा भी कितना साकित हो जाएगा? 5 लाख ही, बाकी 5 लाख कर्जा देना पड़ेगा। और तीसरी सूरत यह है कि कर्जा तो लिया है 10 लाख और गाड़ी जो रखवाई है वो 20 लाख की है, तो फिर इसमें अब देखो कि रहन मजमून है बिकद्री देन, यानी ये 20 लाख की गाड़ी इसमें से 10 लाख जो है वो तो कर्जे के मुकाबले में आ गया, ये है मजमून हिस्सा गाड़ी का, और बाकी के जो 10 लाख हैं गाड़ी की कीमत के वो अमानत के हुक्म में हैं। मालूम हुआ रहन वो मजमून होता है बकदरे देन, और जो देन से जायद कीमत होती है वो अमानत होती है। तो कर्जा कितना लिया? 10 लाख, और गाड़ी कितने वाली रखवाई? 20 लाख, तो 10 लाख गाड़ी जो है वो मजमून है और 10 लाख उसके पास अमानत है, लिहाजा अगर ये 20 लाख वाली गाड़ी मुर्तहिन के पास हलाक हो गई तो ये राहिन ये जाकर नहीं कह सकता कि तुमने 20 लाख वाली गाड़ी मेरी जाया की है, लिहाजा वो 10 लाख तो 10 लाख के बदले हो गए और बाकी 10 लाख मुझे अदा करो। मुर्तहिन कहेगा भाई वो जो बाकी 10 लाख थे वो अमानत के हुक्म में थे, और अमानत में अगर कोई ज्यादती ना हो और वैसे हलाक हो जाए तो उसका जमान नहीं आता। बात समझ में आ गई। अब सूरत यह है, एक शख्स ने अपना एक गुलाम किसी के पास बतौरे रहन के रखवाया है और उससे देन लिया है और यह गुलाम उस मुर्तहिन से भाग गया, तो अगर वो जो कर्ज है वो इस गुलाम की कीमत के बराबर है जी। या इससे ज्यादा है, फिर तो सारा खर्चा मुर्तहिन को देना पड़ेगा जी। क्योंकि यह सारा गुलाम मजमून है जी। गुलाम है मसलन, गुलाम है 10 लाख का और कर्जा भी इसने 10 लाख लिया है या कर्जा 15 लाख लिया है, तो सारा गुलाम उसके पास मजमून है जी। लिहाजा सारे गुलाम का खर्चा यानी जुअल उसको देना पड़ेगा। वो गुलाम भाग गया और कोई आदमी उस गुलाम को पकड़ कर ले आया, तो अब ये 40 दिरहम मुर्तहिन को देने पड़ेंगे। तवज्जो है। लेकिन अगर कर्जा है 10 लाख का और जो इसने गुलाम रखवाया है वो 20 लाख वाला है जी। तो मालूम हुआ 10 लाख गुलाम मजमून है और 10 लाख अमानत है। तवज्जो है। और ये गुलाम भाग गया और कोई पकड़ कर ले आया, तो जितना हिस्सा मजमून है उतना हिस्सा मुर्तहिन को देना पड़ेगा और जितना हिस्सा अमानत है उतना हिस्सा असल मालिक को देना पड़ेगा। तो लिहाजा गुलाम आधा मजमून है और आधा अमानत है, तो लिहाजा खर्चे के जो 40 दिरहम हैं, 20 दिरहम जो है वो मुर्तहिन को देने पड़ेंगे और 20 दिरहम असल मालिक को देने पड़ेंगे। सूरत समझ में आ गई। देखिए भाई कहते हैं, फइनकान अल आबिकु रहनन, अगर वो भागा हुआ गुलाम रहन है, फल जुअलु अलल मुर्तहिनी, तो वो खर्चा जो है वो मुर्तहिन पर होगा। लिअन्नहु अहया मालियतहु बिर्रद्दी, लिअन्नहु इसलिए क्योंकि वो जो वापस करने वाला है, अहया मालियतहु उसने इस गुलाम की मालियत को जिंदा कर दिया। अगर वो गुलाम को वापस ना लाता ये गुलाम तो गोया हलाक ही हो गया था। तो कहते हैं लिअन्नहु अहया मालियतहु इसलिए क्योंकि वापस करने वाले ने इस गुलाम की मालियत को जिंदा कर दिया, बिर्रद्दी वापस करने के जरिए, वही हकहु और ये मालियत जो है ये तो मुर्तहिन का हक था। ये गुलाम की मालियत किसका हक है? मुर्तहिन का हक है। मुर्तहिन ने इस गुलाम को रोका हुआ है अपना कर्जा वसूल करने के लिए, तो इस गुलाम की मालियत जो है मुर्तहिन का हक है। इस इस्तीफा उमीन हा इसलिए क्योंकि वसूली इस गुलाम के जरिए होगी, कर्जे की वसूली इस गुलाम के जरिए होगी। कहते हैं इसीलिए इस्तीफा उमीन हा इसलिए क्योंकि दैन की वसूली इस गुलाम के जरिए होगी। वल जुअलु बिमुकाबलती इहया इल मालियती, और जुअल जो होता है वो मालियत को जिंदगी देने के मुकाबले में होता है। फयकूनु अलैही, लिहाजा वो जुअल जो है वो इस मुर्तहिन पर होगा। वर्रद्दु फी हयाति राहिनी व बादहु सवाउन, यहां बतला रहे हैं चाहे राहिन की जिंदगी में वो गुलाम वापस मुर्तहिन को मिले, चाहे राहिन के मरने के बाद। राहिन वो आदमी जिसने रहन रखवाया था, जो गुलाम का असल मालिक है भाई जी। तो ये गुलाम मुर्तहिन के पास मौजूद है बतौर रहन के, तो और फिर ये गुलाम भाग गया और कोई शख्स फिर इस गुलाम को वापस लाया मुर्तहिन के पास, तो चाहे राहिन जिंदा हो चाहे मर चुका हो, हर हाल में ये जुअल किस पर आएगा? मुर्तहिन पर ही आएगा भाई। तो कहते हैं वर्रद्दु फी हयाति राहिनी व बादहु सवाउन, और राहिन की जिंदगी में या उसके मरने के बाद वापस करना सब बराबर है। लिअन्न अर्रहन ला यबतुलु बिल मौती, इसलिए क्योंकि मौत की वजह से रहन बातिल नहीं होता। वहां दा इदा कानत कीमतुहु मिस्ल दैनी, और ये उस वक्त है यानी ये जुअल किस पर आएगा? मुर्तहिन पर, सारा का सारा। कब? जब गुलाम की कीमत भी दैन के बराबर हो या उससे कम हो जी। तो कहते हैं वहां दा इदा कानत कीमत हो मिसल दैनी औ अकल मिन हो, और यह खर्चा सारा मुर्तहिन पर होगा जब गुलाम की कीमत दैन के बराबर हो या उससे कम हो। फइन कानत अक्सरा, और अगर गुलाम की कीमत दैन से ज्यादा है, फबिकद्री दैनी अलैही, तो मुर्तहिन पर दैन के बकदर खर्चा आएगा। जितना हिस्सा मजमून है वो खर्चा आएगा और जो हिस्सा अमानत है वो असल मालिक से लिया जाएगा। तो कहते हैं फ़इन कानत अक्सरा, और अगर गुलाम की कीमत दैन से ज्यादा है, फ़बी कदरी दैनी अलैही, तो दैन के बकदर मुर्तहिन पर खर्चा होगा, वल बाकी अलर राहिनी, और बाकी जो है राहिन पर होगा, लिअन्न हक़हू बिल कदरिल मज़मूनी, इसलिए क्योंकि राहिन का जो हक है वो मजमून के बकदर है, यानी जितने हिस्से का सामान है उतना उसका मुर्तहिन का हक है। फसारा कसम अनि दवाई व तखलीस ही अनिल जिनायती बिल फिदाई, तो ये इसी तरह हो गया जैसे दवा के समन, भाई वो गुलाम जो मुर्तहिन के पास रखवाया है रहन के तौर पर, वो गुलाम बीमार हो गया और उसके लिए दवा का इंतजाम करना पड़ा और उस पर जो खर्चा हुआ, तो इसमें भी याद रखो अगर गुलाम की कीमत दैन के बराबर या उससे कम है तो दवाई का सारा खर्चा मुर्तहिन को उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर गुलाम की कीमत दैन से ज्यादा है तो मालूम हुआ गुलाम का कुछ हिस्सा अमानत है और कुछ हिस्सा मजमून है, तो उसी के बकदर खर्चा मुर्तहिन और राहिन पर आएगा। जितना हिस्सा मजमून है वो मुर्तहिन पर खर्चा आएगा दवाई का, और जितना हिस्सा अमानत है वो हिस्सा राहिन पर आएगा। भाई बात समझ में आ गई। और इसी तरह अगर ये जो गुलाम जो रहन रखवाया गया था, अगर इस गुलाम ने कोई जिनायत कर ली, किसी का हाथ काट दिया या कोई और जुर्म कर दिया, दूसरे का नुकसान कर दिया, तो इस सूरत के अंदर भी अगर गुलाम की कीमत दैन के बराबर है या कम है तो जिनायत का सारा जमान जो है मुर्तहिन को देना पड़ेगा, और अगर गुलाम की कीमत दैन से ज्यादा है तो गुलाम का कुछ हिस्सा मजमून और कुछ हिस्सा अमानत, तो उसी के बकदर जिनायत का जमान भी राहिन और मुर्तहिन पर आएगा। भाई तो कहते हैं फसारा का समनी दवाई, तो ये दवाई के समन के मिसल हो गया, व तखलीस ही अनिल जिनायती बिल फिदाई, खल्लासा युखलीस तखलीस भाई स्वाद के साथ है, इसका माना है छुड़ाना, व तखलीस ही अनिल जिनायती बिल फिदाई, फिदा कहते हैं उस माल को जो जान छुड़ाने के लिए अदा किया जाए, गुलाम ने जुर्म किया है तो उसकी जान छुड़ाने के लिए जमान अदा करना पड़ेगा। तो कहते हैं फसारा का समनी दवाई, तो ये इसी तरह हो गया जैसे दवाई के समन है, व तखलीस ही अनिल जिनायती बिल फिदाई, और ये इसी तरह हो गया जैसे गुलाम का छुड़ाना है माल के जरिए जिनायत से, माल के जरिए गुलाम को जिनायत से छुड़ाना है, तो उसमें भी दोनों राहिन और मुर्तहिन दोनों पर आएगा अगर गुलाम की कीमत दैन से ज्यादा है। भाई वह इन काना मदयूनन, और अगर वह गुलाम मदयून है, भाई देखो आब्दे मदयून, भाई आब्दे मदयून वो गुलाम है जिसको आका ने तिजारत की इजाजत दी और फिर तिजारत के अंदर इस गुलाम को नुकसान हुआ और इस पर कर्जे चढ़ गए। भाई तो ये जो अब्दे मदयून है इसके बारे में याद रखना, जब कर्जखा आ गए अपने कर्जों का मुतालबा करने, तो आका या तो वो कर्जे अदा करे और गुलाम को छुड़ा ले, और या आका को इख्तियार है कि वो इस गुलाम को बेच दे और उसके समन के जरिए इनके कर्जे अदा करे। तो मदयून गुलाम के अंदर आका को इख्तियार है, वो चाहे तो वो दुयून अदा कर दे और वो चाहे तो वो गुलाम को बेचकर उसके समन के जरिए कर्जे अदा करे। बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी अब सूरत यह है कि एक गुलाम है वो मदयून है, तवज्जो है, अब रहन का मसला नहीं है, आम मदयून गुलाम है आका के पास, और यह गुलाम भाग गया और फिर इस गुलाम को कोई पकड़कर वापस ले आया, तो कहते हैं अगर आका दैन की अदायगी खुद करता है, यानी गुलाम को खुद रखना चाहता है, ये गुलाम तो मदयून है तो, और वो कर्ज का मुतालबा कर रहे हैं, आका अगर कर्जे अदा करके गुलाम खुद रखना चाहता है तो ये जुअल भी आका ही को देना पड़ेगा, ये जुअल भी आका ही को देना पड़ेगा, और अगर आका इस गुलाम को बेचकर कर्जे अदा करना चाहता है तो फिर गुलाम को बेचने के बाद जो समन वसूल होंगे वो जुअल भी उसी समन में से अदा किया जाएगा, सबसे पहले उसमें से वो जुअल अदा किया जाएगा उस गुलाम के समन में से, और बाकी समन जो है वो फिर कर्जखाहों में तकसीम किए जाएंगे। तो कहते हैं वह इनकान मदयूनन, और अगर वो भागा हुआ गुलाम वो मकरूज है, फअलल मौला, तो फिर वो जुअल आका पर है, इन इख्तार कजा अद्दैनी, अगर आका ने दैन की अदायगी को इख्तियार किया, यानी वो गुलाम को अपने पास रखना चाहता है, तो जुअल भी आका ही को देना पड़ेगा। वह इन बी आ, और अगर उस गुलाम को बेचा गया, किस लिए बेचा गया? कर्जे अदा करने के लिए। तो कहते हैं वह इन बी आ, और अगर उस गुलाम को बेचा गया, बुदी आ बिल जुअली, तो इब्तिदा की जाएगी जुअल के जरिए, यानी समन में सबसे पहले जुअल अदा किया जाएगा वो शख्स जो गुलाम को लेकर आया है। तो कहते हैं वह इन बी आ, और अगर उस गुलाम को बेचा गया, बुदी अबिल जोली, तो जोल के जरिए इब्तिदा की जाएगी, वल बाकी लिल गुरामा, और बाकी के समन जो है वो कर्ज खाहों के लिए होंगे, लिअन्नहू मुअनतुल मिल्की, इसलिए क्योंकि ये जोल जो है ये मिल्कियत का खर्चा है, ये जोल ये मिल्कियत का खर्चा है, तो जो मिल्कियत रखेगा खर्चा भी उसी को उठाना पड़ेगा। तो आका अगर इस गुलाम को रखता है तो यह खर्चा भी आका को देना पड़ेगा, और अगर यह गुलाम आका बेचकर समन जो है वो कर्जखाहों को देना चाहता है, तो यूं समझो गोया गुलाम को वो कर्जखाहों के हवाले करना चाहता है, तो खर्चा भी किस पर आएगा? कर्जखाहों पर ही आएगा। लिहाजा समन में से सबसे पहले खर्चा अदा किया जाएगा और फिर बाकी का माल जो है वह कर्जखाहों में तकसीम किया जाएगा। तो कहते हैं लिअन्नहु मुअनतुल मिल्की, इसलिए क्योंकि जो जुअल है ये मिल्कियत का खर्चा है, वल मिल्कु फीहि कल मौकूफी, और इस गुलाम के अंदर मिल्कियत जो है कल मौकूफी, वो मौकूफ जैसी है, इस गुलाम के अंदर मिल्कियत मौकूफ जैसी है, यानी मौकूफ तो नहीं है लेकिन मौकूफ जैसी है, हो सकता है इसको आका अपने लिए रख ले और हो सकता है आका कर्जखाहों के लिए इसको बेच दे, तो इसमें मिल्कियत किसकी तरह है? मौकूफ की तरह ही है। तो जिसके लिए गुलाम की मिल्कियत साबित होगी खर्चा भी उसी पर आएगा। आका ने गुलाम को अपने पास ही रखा और कर्जा अदा किया है तो जोल भी आका को देना पड़ेगा, और अगर आका वो गुलाम कर्जखाहों के लिए बेच रहा है तो गोया गुलाम कर्जखाहों को दे रहा है, तो खर्चा भी कर्जखाहों के माल यानी उसी गुलाम के समन में से अदा किए जाएंगे। तो कहते हैं वल मिल्कुफी ही कल मौकूफी, और इस गुलाम के अंदर जो मिल्कियत है वो मौकूफ जैसी है, फयजिबू अला मैयस्तकिर लहू, तो ये खर्चा भी वाजिब होगा, अला मैयस्तकिर लहू, उसी शख्स पर जिसके लिए यह मिल्कियत साबित हो। इस्तकर्रा यस्तकिर का क्या माना है? इस्तकर्रा का माना सबता के हैं भाई। फया जीबूते, खर्चा भी वाजिब होगा, अला मैं यस्तकिर लहू, जिसके लिए मिल्कियत साबित होगी। आगे देखिए वह इन का न जानियन फअलल मौला। अब सूरत यह है कि एक गुलाम है उसने जिनायत कर दी है, और याद रखो जब गुलाम जिनायत करे तो फिर यहां भी आका को इख्तियार है कि वो चाहे तो वो जिनायत का जमान अदा कर दे और गुलाम को अपने पास ही रखे, और चाहे तो उन गुलाम को उनके हवाले कर दे कि मैं जिनायत के पैसे नहीं दे सकता, ये गुलाम ही तुम रखो। तो लिहाजा अब सूरत यह है एक गुलाम ने जिनायत की है और जिनायत के बाद वो भाग गया है, तो अब इस गुलाम को कोई पकड़कर ले आता है तो ये खर्चा किस पर होगा, जुअल किस पर होगा? तो आपको बतलाएंगे अगर आका ने इस गुलाम को खुद रखने को इख्तियार कर लिया कि जिनायत का जमान मैं देता हूं, गुलाम को मैं ही रखूंगा, तो जुअल भी आका को देना पड़ेगा। और अगर आका ने वो गुलाम जो है जिनायत के औलिया के सुपुर्द कर दिया जिनकी जिनायत की थी गुलाम ने, तो फिर वो खर्चा भी उस जिनायत के औलिया पर ही होगा। तो कहते हैं वह इनका न जानियन, और अगर वो भागा हुआ गुलाम जिनायत करने वाला है, फअलल मौला, तो वो जोल आका पर होगा, इन इख्तार अल फिदा, अगर आका ने फिदिया देना कबूल कर लिया, लिआउदिल मनफाती इलैही, इस वजह से कि इस वापस करने का फायदा उसी की तरफ लौट रहा है, आका ने रखा है इस गुलाम को तो वापस करने का फायदा आका को हुआ है, लिहाजा जोल भी उसी पर होगा, वअलल औलियाई, और ये जोल जो है जिनायत के औलिया पर होगा, इन इख्तार दफा, अगर आका ने ये उस गुलाम को देना इख्तियार कर लिया जी। कि अगर ये गुलाम वो इन औलिया को दे रहा है, तो कहते हैं वालल औलिया, और ये जौल जो है वो जिनायत के औलिया पर होगा, इन इख्तार दफा, अगर आका ने ये गुलाम उनको देने को इख्तियार कर लिया, लिआउदिहा इलैहिम, इसलिए क्योंकि गुलाम वापस करने का नफा उनकी तरफ लौट रहा है, वह इनका न मौहूबन फालल मौहूबी लहू। भाई सूरत मसला ये, आका ने अपना एक गुलाम किसी को हिबा कर दिया था, तो आका हुआ वाहिब और ये गुलाम हुआ मौहूब जो हिबा किया गया है, और जिसको तोहफा मिला है वो हुआ मौहूब लहू, वो क्या है? महूब लहू, तो आका है वाहिब और जिसको तोहफा मिला है वो है महूब लहू। अब ये महूब लहू गुलाम भाग गया
जी,
महूब लहू गुलाम भाग गया और फिर इसको कोई पकड़कर वापस ले आया तो फिर इसका खर्चा किस पर होगा? कहते हैं इसका खर्चा महूब लहू पर होगा, इसका खर्चा महूब लहू पर होगा। और आप पढ़ चुके हैं कि हिबा के अंदर रुजू भी जायज है
जी।
हिबा के अंदर रुजू भी जायज है, यानी जब एक आदमी एक चीज किसी को तोहफे में दे दे तो वो दूसरा आदमी कब्जा करने के बाद मालिक बन जाता है, लेकिन ये मिल्कियत लाजिम नहीं है। वो मालिक जो है वो चीज वापस ले सकता है, लेकिन इसके अंदर दोनों की रजामंदी जरूरी है। और अगर वो चीज वापस देने पर राजी नहीं है तो वो आदमी फिर काजी के पास जाकर उस चीज को वापस ले सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये महूब गुलाम भाग गया और फिर कोई इस गुलाम को वापस ले आया तो महूब लहू जो है उसको जौल देना पड़ेगा। और अगर आका उस महूब लहू से इस गुलाम को वापस लेता है, अगर आका अपने इस तोहफे के अंदर रुजू करता है और महूब लहू से यह गुलाम वापस लेता है, कहते हैं फिर भी खर्चा महूब लहू पर ही आएगा
जी।
फिर भी खर्चा महूब लहू पर ही आएगा। तो कहते हैं वह इनका ना महूबन, और अगर वो गुलाम जो भागा है वो हिबा किया गया था, फअल महूब लहू, तो वो खर्चा जो है महूब लहू पर होगा। वह इन रजा अल वाहिबु फी हिबती ही बादर रद्दी, अगरचे हिबा करने वाला रुजू कर ले अपने हिबा में, बादर रद्दी उस गुलाम के वापस करने के बाद, लिअन अल मनफअत लिल वाहिबि मा हसलत बिर रद्दी। भाई सवाल पैदा होता है, यहां तो जब आका ने रुजू कर लिया हिबा के अंदर तो गुलाम को वापस करने का फायदा तो हकीकत में इस वाहिब को हुआ है
जी।
इसको गुलाम वापस मिल गया। तो कहते हैं वह इनका ना मौहूबन, और अगर वह भागा हुआ गुलाम हिबा किया गया था, फअल मौहूब लहू, तो वो जुअल जो है वो महूब लहू पर होगा। वह इन रजा अल वाहिबु फी हिबती ही, अगरचे हिबा देने वाला अपने हिबा में रुजू कर ले, बादर रद्दी उस गुलाम के वापस करने के बाद, लिअन अल मनफअत लिल वाहिबि मा हसलत बिर रद्दी, लिअन अल मनफअत लिल वाहिबि, इसलिए क्योंकि इस गुलाम का जो नफा है हिबा करने वाले के लिए, मा हसलत बिर रद्दी, वो वापस करने की वजह से हासिल नहीं हुआ, बल बितर किल महूब लहू तसरुफा फीही, बल्कि इस वजह से कि महूब लहू ने इसके अंदर अपना तसरुफ छोड़ दिया था, बादर रद्दी वापस करने के बाद। भाई देखिए यहां दो चीजें हैं, एक यह है कि वो उस गुलाम को एक शख्स वापस ले आया, यह है रद्द, और फिर महूब लहू को जब यह गुलाम वापस मिल गया तो फिर वाहिब इसको वापस ले सकता है। लेकिन वाहिब के वापस लेने से पहले ही अगर महूब लहू ने यह गुलाम आगे बेच दिया या किसी और को तोहफा दे दिया, फिर वाहिब गुलाम वापस नहीं ले सकता, क्योंकि वह गुलाम महूब लहू की मिल्कियत से निकल चुका है। तो हिबा में रुजू हो सकता है, लेकिन जब तक महूब लहू किसी और को उसका मालिक न बना दे। अगर महूब लहू ने वो हिबा किसी और को बेच दिया है या किसी और को तोहफे के तौर पर दे दिया है तो वो हिबा तो महूब लहू की मिल्कियत से निकल गया, लिहाजा वाहिबा उसमें रुजू नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि यहां पर ये जो महूब गुलाम था इसका खर्चा महूब लहू पर आएगा, तो इश्काल होता है कि वाहिब जब इस गुलाम को वापस ले लेगा, अगर वो अपने हिबा में रुजू करता है और ये गुलाम वापस ले लेता है, तो इस गुलाम की वापसी का फायदा तो वाहिब को हुआ है, लिहाजा खर्चा वाहिब पर आना चाहिए। तो जवाब देंगे कि यहां गुलाम को वापस करने का नफा वो वाहिब को नहीं हासिल हुआ, बल्कि वाहिब को जो नफा हासिल हुआ है वो इस वजह से है कि महूब लहू ने इस गुलाम के अंदर आगे कोई तसर्रुफ नहीं किया। अगर वो इसमें तसर्रुफ कर देता और इस गुलाम को आगे बेच देता या किसी को तोहफे के तौर पर दे देता तो वाहिब इस गुलाम को नहीं ले सकता था। तो मालूम हुआ वाहिब को जो गुलाम का नफा हासिल हुआ है वो उस वापस लाने वाले की वजह से नहीं है, बल्कि इस महूब लहू के अपने तसर्रुफ को तर्क करने की वजह से है कि इसने अपना तसर्रुफ नहीं किया। अगर वो तसर्रुफ कर लेता तो फिर ये गुलाम को वापस नहीं ले सकता था। लिहाजा जब गुलाम को वापस लाने का फायदा वाहिब को हासिल नहीं तो खर्चा भी वाहिब पर नहीं आएगा। तो कहते हैं लिअन्न अल-मनफअत लिल-वाहिबी मा हसलत बिर-रद्द, इसलिए क्योंकि वाहिब का जो नफा है वो गुलाम वापस करने की वजह से हासिल नहीं हुआ, बल बितरकिल मौहूब लहू तसर्रुफ फीही, बल्कि मौहूब लहू का उस गुलाम के अंदर तसर्रुफ को छोड़ देना बाद अर-रद्द, उसके वापस करने के बाद, तो उसकी वजह से आका को फायदा हुआ है। या यूं कहें, दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि ये जो आका को इस गुलाम का फायदा हुआ है ये दो चीजों की वजह से हुआ है, एक तो वो जो शख्स गुलाम को पकड़कर वापस ले आया और एक महूब लहू ने इस गुलाम के अंदर तसरुफ को छोड़ दिया, वापस लाने के बाद भी तसरुफ को छोड़ दिया, तो आका को इन दोनों की वजह से फायदा हुआ है। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा करीब जो है वो वापसी के बाद महूब लहू का इसके अंदर तसरुफ न करना है, लिहाजा इस नफे की निस्बत उस महूब लहू के तसरुफ के छोड़ने की तरफ की जाएगी, गुलाम को वापस लाने की तरफ यह निस्बत नहीं की जाएगी। तो यह माना है कि आका को यह वापसी की वजह से यह फायदा नहीं हुआ, बल बितरकिल महूब लहू तसरुफ फी हिबादर रद्दी, बल्कि इस वजह से कि महूब लहू ने उस गुलाम के अंदर तसरुफ छोड़ दिया था उस गुलाम के वापस होने के बाद। व इन कान अली सबी यिन फल जोलुफी माली ही, भाई सूरत है मसला यह कि जो गुलाम भागा है यह किसी बच्चे का माल है, तो फिर इस सूरत में याद रखो जोल भी उसी बच्चे के माल में से अदा किया जाएगा। तो कहते हैं वह इनकान अली सबी यिन, और अगर यह भागने वाला गुलाम किसी बच्चे का था, फल जोलुफी माली ही, तो जोल भी उसी बच्चे के माल में होगा, लिअन नहु मुअनतु मिल्की ही, इसलिए क्योंकि यह उसकी मिल्कियत का खर्चा है। हम पहले बयान कर चुके कि ये जो जोल होता है ये मिल्कियत का खर्चा होता है। तो कहते हैं लिअन नहु मुअनतु मिल्की ही, इसलिए क्योंकि ये जो जोल है ये उसकी मिल्कियत का खर्चा है। वह इन रद्दहु वसीयुहु फला जोल लहू, भाई वसी वो शख्स है जिसे किसी शख्स ने मरते हुए अपने माल का निगरान मुकरर कर दिया कि मैं मरने लगा हूं तो मेरे माल के निगरान रहना, मसलन मेरे वारिसों के दरमियान इस माल को सही तरीके से तकसीम कर देना, या ये मेरे बच्चे नाबालिग हैं इन पर खर्च करते रहना और जब ये बालिग हो जाए तो फिर ये माल इनके हवाले कर देना। तो अब एक नाबालिग बच्चा है उसका वसी है भाई, वो उसके माल की निगरानी कर रहा है, और फिर इस बच्चे का एक गुलाम भाग गया और फिर ये वसी उसको पकड़कर ले आया, तो क्या इस वसी को जोल मिलेगा या नहीं? तो आपको बतलाएंगे कि नहीं, वसी को जोल नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि इस माल की हिफाजत की जिम्मेदारी वसी ही की थी, लिहाजा ये तो इसी तरह हुआ गोया वो अपने लिए जोल वसूल कर रहा है अपने ही आप से, और अपने आप से अपने लिए जोल वसूल नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं वह इन रद्दहु वसीयुहु, और अगर उस भागे हुए गुलाम को उस बच्चे के वसी ने वापस किया, फला जोल लहू, तो वसी के लिए जोल नहीं होगा, लिअन्नहु हुवल्लज़ी यतवल्ला रद्द फीही, इसलिए क्योंकि वसी जो है वो ही इस रद्द का मुतवल्ली है भाई, वही इस रद्द का मुतवल्ली है, यानी जिसको वो गुलाम वापस किया जाएगा वो मुतवल्ली कौन है? उस रद्द का मुतवल्ली खुद वसी है। तो अगर इसको जौल देना पड़े ये तो गोया ऐसे ही होगा जैसे ये अपने ऊपर अपने लिए जौल को लाजिम कर रहा है। तो कहते हैं लिअन्नहु, इसलिए क्योंकि ये जो वसी है हुवल्लज़ी यतवल्ला रद्द फीही, वो ही इसके अंदर रद्द का मुतवल्ली है भाई, ये जो वसी है यही इस रद्द का मुतवल्ली है भाई। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।